आगे सबक देखिए, व ईदा औफाहा महरहा नकलहा इला हैसु शा अली कौलिही ताला अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकन्तुम वकील ला युख्रिजुहा इला बलदिन गैरी बलदिहा लिअन्नल गरीबत तुदा वफी कुरल मिस्रिल करीबति ला ततहक्कुल गुरबा। भाई गुज़श्ता सबक के अंदर साहिब हिदाया ने कफालत का मसला जिक्र फरमाया था। कफालत जिसको हम उर्दू में जमानत कहते हैं कि एक शख्स दूसरे की जमानत देता है, और ये जमानत जो है कभी जात की होती है और कभी माल की होती है। जात की जमानत दी जाती है कि मसलन एक शख्स का दूसरे शख्स पर कोई हक है और वो उसको छोड़ नहीं रहा, तो एक शख्स जमानत देता है कि मैं जामिन हूं, ये भागेगा नहीं, फुला तारीख को इसको हाजिर करना मेरा काम है। तो देखो यहां उसने माल की जमानत नहीं दी बल्कि उस शख्स को हाजिर करने की जमानत दी है, तो यह है जात की जमानत। और बाज औकात माल जो है उसकी जमानत दी जाती है कि एक शख्स दूसरे शख्स से कोई कर्ज लेने गया कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वो दूसरा इस पर एतबार करने को तैयार नहीं कि मालूम नहीं तुम मेरा माल बाद में वापस करोगे या नहीं करोगे, तो फिर एक तीसरा शख्स जो है वो जामिन बन जाता है कि मैं जमानत देता हूं ये शख्स आपका माल वापस करेगा, और अगर इसने वापस न किया तो मैं अदायगी कर दूंगा। तो इसको उर्दू में जमानत कहते हैं, तो और फिका के अंदर इसको कफालत कहते हैं। जमान का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और कफालत का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है भाई। और नीज मैंने आपको यह भी बतलाया था कि एक है बैअ और एक है निकाह। निकाह के अंदर हुकूक अकद का ताल्लुक जो है वो वकील से नहीं होता, वकील सिर्फ पैगाम रसा है और निकाह करवाने वाला है, जबकि निकाह के जो हुकूक हैं यानी औरत की तरफ से महर का मुतालबा होता है और खावंद की तरफ से अपनी बीवी का मुतालबा होता है कि मेरा निकाह हो गया है अब मेरी बीवी मेरे हवाले की जाए, तो ये जो हुकूक हैं निकाह के अंदर इनका ताल्लुक वकील से नहीं होता। वकील सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाला है, वो सिर्फ अल्फाज बोल रहा है, दोनों का निकाह करवा रहा है, लेकिन हुकूक अकद का ताल्लुक इस वकील से या इस वली से नहीं होता। हुकूक का ताल्लुक उस असील से होगा जिसका अकद करवाया जा रहा है, जबकि बैअ के अंदर जो हुकूक अकद का ताल्लुक वो अकद करने वाले से है। वो अकद करने वाले चाहे असील हैं चाहे वो वकील हैं, जो भी अकद बैअ करेगा हुकूक अकद का ताल्लुक उसी से होगा। यानी जिन दो आदमियों ने आपस में बैअ की है उनमें से एक बाय है और एक मुश्तरी है, मुश्तरी का हक है कि वो मबिया वसूल करे और बाय का हक है कि वो समन का मुतालबा करे, वो समन वसूल करे, तो ये जो हुकूक हैं बैअ के अंदर ये जो अकद करने वाले हैं उन्हीं से मुतालिक होते हैं। अगर अकद करने वाले वकील हैं तो मबीह की अदायगी और समन की वसूली करना इन्हीं का काम है, मुअक्किल जाकर समन का मुतालबा या मबीह का मुतालबा नहीं कर सकता भाई। लिहाजा अब एक वली जो है उसने सगीर या सगीरा के माल में से कोई चीज बेच दी, जब बेची तो ये वली जो है समन वसूल करना भी अब इसी का काम है, यह हुकूक अकद का ताल्लुक इसी से है, लिहाजा ये अब मुश्तरी की तरफ से समन का जामिन बनना चाहता है तो ये जायज नहीं है भाई। वजह ये कि ये समन वली ने ही तो वसूल करने हैं और ये जामिन भी बन जाए समन का, तो फिर तो ये अपने लिए ही जामिन बन गया, जामिन ली नफसी ही बन जाएगा ये, और जामिन ली नफसी ही तो बातिल है भाई। जामिन जो है इंसान गैर के लिए बनता है, अपनी जात के लिए किसी चीज का जामिन नहीं बनता। जबकि इसके मुकाबले में अगर वली ने निकाह करवाया है अपनी बालिगा बेटी का या सगीरा का और फिर वो महर का कफील बनना चाहता है, महर का जामिन बनना चाहता है इनके लिए, तो याद रखें ये जामिन बन सकता है। वजह यह कि ये अकदे निकाह हुआ है और इसमें हुकूक अकद का ताल्लुक इस वली से नहीं है बल्कि वो असील जो है उसके साथ हुकूक अकद का ताल्लुक है, लिहाजा ये जामिन बन सकता है। और फिर वो औरत बाद में खावन से भी मुतालबा कर सकती है और अपने वली से भी महर का मुतालबा ذبح کر سکتی ہے. اور میں نے پھر یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو ایک شخص دوسرے شخص کی ضمانت دیتا ہے, یہ دوسرے کے کہنے پر بھی ضمانت دی جا سکتی ہے اور دوسرے کے کہے بغیر بھی ضمانت دی جا سکتی ہے. لیکن پھر فرق یہ ہے, اگر دوسرے کے کہے بغیر خود ہی ضمانت دی تھی تو پھر اگر اس کفیل نے مال کی ادائیگی کر دی تو پھر یہ اس اصیل پر رجوع نہیں کر سکتا, کیونکہ اصیل کہے گا بھائی میں نے آپ سے کب کہا تھا کہ آپ میری طرف سے ضمانت دیں, آپ نے خود ہی ضمانت دی ہے, خود ہی ادائیگی کی ہے, لہذا مجھ سے ادائیگی کا مطالبہ آپ نہیں کر سکتے. جبکہ اگر کفیل نے اصیل کے کہنے پر زمان دیا تھا تو پھر اس صورت کے اندر کفیل نے اگر ادائیگی کر دی تو وہ اصیل پر رجوع کر سکتا ہے. یہاں پر بھی اگر ولی نے مہر ادا کر دیا تو اگر خاوند کے کہنے پر اس نے زمان دیا تھا تو یہ ولی خاوند پر رجوع کرے گا, اور اگر اس کے کہے بغیر اس نے ضمانت دی تھی تو پھر یہ خاوند پر رجوع نہیں کر سکتا بھائی. اور اس کے بعد صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکاح کے اندر عورت کا حق ہے کہ مہر وصول کرے, تو وہ مہر کی وصولی تک خاوند کو صحبت سے روک سکتی ہے کہ وہ خاوند کو صحبت پر قدرت نہ دے. جیسے بیع کے اندر ہوتا ہے, یاد رکھو جیسے ہی ایجاب اور قبول ہوتا ہے مشتری جو ہے وہ مبیعے کا مالک بن جاتا ہے. اب مشتری اس سے کہتا ہے کہ یہ مبیعہ میرے حوالے کرو کیونکہ میں اس کا مالک بن چکا ہوں, تو بائے اس مبیعے کو روک سکتا ہے کہ تم پہلے سمن میرے حوالے کرو پھر تمہیں میں مبیعہ دوں گا, اس لیے کیونکہ مبیعے میں تو تمہارا حق متعین ہو گیا, تم اس کے مالک بن گئے, لیکن سمن جو ہیں ان میں تو ابھی بھی میرا حق متعین نہیں, وہ جب مجھے مل جائیں گے تو پھر میرا حق بھی متعین ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے, میاں بیوی کا جب نکاح ہو گیا تو خاوند کا حق تو متعین ہو گیا, وہ منافع بزع کا مالک بن گیا, ابھی وصول تو نہیں کیے صحبت تو نہیں کی لیکن اس کا حق تو متعین ہو گیا, وہ منافع کا مالک بن گیا, لیکن عورت کا حق ابھی بھی متعین نہیں کیونکہ مہر اس کے حوالے نہیں کیا گیا. تو عورت مطالبہ کر سکتی ہے کہ پہلے بدل یعنی مہر میرے حوالے کرو پھر اس کے بعد میں مبدل تمہارے حوالے کروں گی. اور نیز اس دوران عورت پر پابندیاں بھی نہیں آئیں گی, بات سمجھ میں آ گئی. اور اگر مہر جو ہے وہ سارا کا سارا مؤجل تھا, یعنی نکاح کے اندر اس کی مدت مقرر کر لی گئی کہ خاوند 6 ماہ کے بعد مہر ادا کرے گا اور عورت اس پر راضی ہو گئی, تو طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عورت کو منع کا حق نہیں ہوگا, اب وہ خاوند کو صحبت سے نہیں روک سکتی. وجہ یہ کہ اس نے جب خود مدت دے دی ہے تو اس نے اپنا حق منع خود ہی ساقط کر دیا. لیکن میں نے بتایا امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اب بھی عورت کو حق منع ہے بھائی, اور یاد رکھو فتویٰ امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر ہی ہے استحسانن, قیاس تو یہی تقاضا کرتا ہے جو طرفین نے ذکر فرمایا کہ عورت نے اپنا حق منع ساقط کر دیا ہے مدت دے کر, تو جب حق منع ساقط کر دیا اب اس کو روکنے کا حق نہیں ہے, قیاس یہی تقاضا کرتا ہے. لیکن امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی عورت کو حق منع ہے, وجہ یہ ہے کہ خاوند کو معلوم ہے کہ یہ نکاح جو ہے اس کے اندر مہر دینا پڑتا ہے, اس کے باوجود جو ہے خاوند نے جب مدت ان کے ساتھ مل کر مقرر کر لی کہ میں 6 ماہ کے بعد تمہارا حق ادا کروں گا, تو گویا دوسرے لفظوں میں خاوند نے اپنا حق بھی اتنی ہی مدت کے لیے مؤخر کر دیا, لہذا ابھی بھی عورت کو حق منع ہے بھائی. اور نیز طرفین نے اس کو قیاس کیا تھا بیع پر کہ جس طرح بیع کے اندر جب مدت مقرر کر لی جائے تو پھر بائے کو مبیعہ روکنے کا حق نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص نے دوسرے شخص سے بیع کی اور یہ طے کیا کہ سمن میں 6 ماہ کے بعد دوں گا, تو اب اس بائے کو یہ مبیعہ روکنے کا حق نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنا حق خود 6 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا, وہ جو سمن وصول کرنے تھے تو اس نے اپنا حق منع بھی اپنا حق حبس بھی ساقط کر دیا, تو اب وہ مبیعہ نہیں روک سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بیع کے اندر یہ ضروری نہیں کہ سمن پہلے حوالے کرنا ضروری ہو گئی، بلکہ بعض بیوع ایسی بھی ہیں جہاں پر مبیعہ اور سمن ایک ساتھ ایک دوسرے کے حوالے کیے جاتے ہیں، جیسے بیع مقایضہ ہے. بیع مقایضہ میں نے بتلایا تھا سامان کے بدلے سامان کی بیع ہو، یعنی دونوں طرف میں سے کسی طرف بھی سونا چاندی یا درہم و دینار نہ ہو تو پھر یہ کیا ہے، بیع مقایضہ ہے، دونوں طرف سامان ہو. تو اس صورت میں مبیعہ اور سمن اکٹھا ایک دوسرے کے حوالے کیا جاتا ہے. معلوم ہوا ہر بیع کے اندر سمن پہلے دینا ضروری نہیں ہے. بھائی اس کے بعد پھر یہ مسئلہ ذکر کیا تھا صاحب ہدایہ نے کہ اگر عورت اپنی مرضی سے خاوند کو صحبت کرنے دے یا اس کے ساتھ خلوت صحیحہ کر لے، صحبت بے شک نہیں ہوئی لیکن خلوت صحیحہ پائی گئی، تو کیا اس ایک دفعہ کی صحبت سے یا ایک دفعہ کی خلوت سے عورت کا حق منع ساقط ہوا یا ساقط نہیں ہوا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت کا حق منع ابھی بھی ساقط نہیں ہے، لہذا یہ اب بھی خاوند کو صحبت سے روک سکتی ہے اپنا مہر وصول کرنے کے لیے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، کہ جب اس عورت نے ایک دفعہ خاوند کو صحبت کرنے دی یا ایک دفعہ اس کے ساتھ خلوت صحیحہ کر دی تو خلوت صحیحہ بھی کس کے قائم مقام ہے؟ ودی کے قائم مقام. تو لہذا گویا اس نے معقود علی خاوند کے سپرد کر دیا سارا کا سارا ایک ہی صحبت کی وجہ سے، اور جب سارا معقود علی دوسرے کے حوالے کر دیا جائے تو پھر وہاں روکنے کا حق نہیں رہتا. جیسے کہ آپ بیع کے اندر دیکھتے ہیں، بائے جب مبیعہ ایک مرتبہ مشتری کے حوالے کر دے تو پھر اب اس سے واپس لے کر وہ مبیعہ کو روک نہیں سکتا. شریعت نے بائے کو حق دیا تھا وہ مبیعہ روک سکتا تھا سمن وصول کرنے کے لیے، لیکن اس نے خود ہی مبیعہ مشتری کے حوالے کر دیا. جب مبیعہ مشتری کے حوالے کر دیا تو اب اس کو روکنے کا حق نہ رہا، اس نے اپنا حق خود ہی ساقط کر دیا. تو یہاں پر بھی صاحبین فرماتے ہیں عورت نے جب خاوند کو ایک دفعہ صحبت کرنے دی یا اس کے ساتھ ایک دفعہ خلوت کر دی تو پھر پورا معقود علیہ اس کے حوالے کر دیا، لہذا اب اس کو روکنے کا حق نہیں رہے گا. وہ فرماتے ہیں دیکھو، اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اگر صحبت سے پہلے طلاق دے گا تو نصف مہر آئے گا، لیکن اگر خاوند نے ایک دفعہ بھی صحبت کر لی تو پورا مہر پکا ہو جاتا ہے. معلوم ہوا ایک دفعہ کی صحبت سے بھی گویا بیوی نے پورا معقود علیہ خاوند کے حوالے کر دیا تو اب خاوند پر بھی لازم ہو گیا کہ وہ سارا کا سارا مہر دے. لہذا اب عورت نے جب پورا معقود علیہ حوالے کر دیا اب اسے روکنے کا حق نہیں. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب بھی عورت خاوند کو صحبت سے روک سکتی ہے، وجہ یہ کہ ہر وتی جو ہے وہ بضع محترم کے اندر تصرف ہے، اور بضع جو ہے وہ معزز و محترم ہے، اس کے اندر کوئی بھی تصرف جو ہے عوض سے خالی نہیں ہونا چاہیے. تو اگر خاوند نے ایک دفعہ صحبت کی ہے تو اب بھی عورت کو روکنے کا حق ہے، کیونکہ دوسرا جو تصرف ہوگا یعنی دوسری صحبت جو ہوگی وہ بھی دراصل تصرف ہے بضع محترم کے اندر، لہذا اس کے مقابلے میں بھی عوض ہونا چاہیے. تو بیوی جو ہے روک سکتی ہے خاوند کو صحبت سے اپنا عوض وصول کرنے کے لیے. اور باقی جو صاحبین نے دلیل ذکر فرمائی تھی کہ ایک ہی صحبت کی وجہ سے خاوند پر پورا مہر لازم ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی جواب دیا تھا صاحب ہدایہ نے امام صاحب کی طرف سے کہ وہاں چونکہ ایک ہی وتی معلوم ہے، باقی وتی جو ہیں وہ مجہول ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں وہ ہوتی بھی ہے یا نہیں، تو ایک وتی ہوئی معلوم اور باقی وتیاں جو ہیں وہ مجہول ہیں، اور مجہول معلوم کا مقابل نہیں بن سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو خاوند مہر دے رہا ہے کچھ معلوم وتی کا عوض ہے اور کچھ مجہول وتی کا عوض ہے، نہیں، عوض سارا معلوم ہی کا ہوگا، مجہول مقابل نہیں بن سکتا، وہ معلوم کے مقابلے میں عوض کا حقدار نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہاں چونکہ ایک ہی وتی معلوم ہے تو وہ سارا مہر اس معلوم وتی کا عوض قرار دیا جائے گا. لیکن اگر خاوند نے ایک اور وتی کر لی اور پھر اس کے بعد طلاق دیتا ہے تو بالاتفاق یہ جو خاوند مہر دے رہا ہے یہ دونوں وتیوں کا عوض ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی وتی کا تو عوض ہے اور دوسری وتی عوض سے خالی ہے. تو معلوم ہوا کہ جب وتی معلوم ہوگی तो वो इवज से खाली नहीं होगी, और मजहूल हो तो फिर वो मालूम का मुकाबिल नहीं बन सकती। भाई कहते हैं ये इसी तरह है जैसे कोई गुलाम जिनायत करे, अगर उसने एक ही जिनायत की है तो उस एक जिनायत के बदले में ही गुलाम सुपुर्द कर दिया जाएगा, ये सारा गुलाम उसी एक जिनायत का इवज हो जाएगा। और अगर एक गुलाम ने पे दर पे कई जिनायतें कर दी और फिर उसके बाद वो लोग जो हैं मुतालबा लेकर आ गए कि इस गुलाम ने हमारा नुकसान किया है, हमारे माल की अदायगी की जाए, तो फिर इस सूरत में उस एक गुलाम को उन सारी जिनायतों के इवज में दे दिया जाएगा। तो जैसे गुलाम एक जिनायत करता था उसके इवज में गुलाम दे देते थे, और ज्यादा जिनायतें करता था तो उन सारों का इवज वो गुलाम बन जाता था। यहां पर भी अगर खामन ने एक सोहबत की है और फिर तलाक देता है तो सारा महर उस एक सोहबत का इवज करार देंगे, और अगर खामन ने ज्यादा सोहबतें की हैं तो ये महर उन सब का इवज करार दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये महर पहली सोहबत का इवज है और बाकियों का इवज नहीं है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वईदा औफाहा महरहा नकलहा इला हैसु शाआ لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم। भाई याद रखो, खावन जब बीवी को महर अदा कर दे तो खावन ने बीवी का हक अदा कर दिया। अब खावन इस शहर से मुंतकिल होता है, किसी दूसरे शहर जाकर रहता है, तो वो अपनी बीवी को भी अपने साथ मुंतकिल कर सकता है। भाई तो कहते हैं वह इदा औफाहा महरहा, और जब खावन ने उस औरत का महर अदा कर दिया, नकलहा इला हैसु शाअ, तो इसको मुंतकिल कर सकता है वो जहां चाहे। लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से दलील जिक्र कर रहे हैं कि कैसे मुंतकिल कर सकता है, उसकी दलील क्या है। कहते हैं अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अस्किनो हुन्न मिन हैसु सकंतुम, कि इन औरतों को भी रिहाइश दो, इन औरतों को भी ठहराओ, मिन हैसु सकंतुम, जहां तुम रिहाइश रखो, यानी जहां तुम रहो वहीं इन औरतों को भी रखो। इससे मालूम हुआ जहां खामंद रहे वो औरत को वहां मुंतकिल कर सकता है। भाई वकीला, और कहा गया है, ये बात फुकहा फरमाते हैं, उनका कौल नकल फरमा रहे हैं साहिब हिदाया। वकीला, और कहा गया है, ला युखरिजुहा इला बलदिन गैरी बलदिहा, कि खावंद उसको मुंतकिल नहीं कर सकता इला बलदिन, किसी दूसरे ऐसे शहर में, गैरी बलदिहा, जो इस औरत के शहर के अलावा हो। खावंद इसको, इस बीवी को इसके अपने शहर के अलावा किसी दूसरे शहर मुंतकिल नहीं कर सकता। क्यों? कहते हैं लिअन्न अल-गरीब तुअज़ा, गरीब कहते हैं अजनबी को और मुसाफिर को, या इस तरह परदेसी जो है, जो अपने वतन से दूर है, उसको गरीब कहते हैं। लिअन्न अल-गरीब, इसलिए क्योंकि वो औरत जो परदेसी है, तुअज़ा, वो अजियत पाती है, उसको अजियत होती है बेवतनी की वजह से, अपने वतन से दूर होने की वजह से। तो कहते हैं इसको मुंतकिल नहीं कर सकता। लिअन्नल गरीब तुअज़ा, क्योंकि परदेसी औरत जो है वो अजियत पाती है, उसको अजियत होती है। वफी कुरल मिस्रिल करीबती, और शहर के करीबी बस्तियों में, ला ततहक्कुल गुरबतु, परदेस नहीं पाया जाता, यानी जिस शहर में औरत रहती है किसी दूसरे शहर मुंतकिल करना, यानी दूर मुंतकिल करना तो जायज नहीं। ये बात फुकहा फरमा रहे हैं, लेकिन करीब की बस्तियों में मुंतकिल कर सकता है, यानी जो मुद्दत सफर से कम है, 3 दिन की मसाफत से कम है, वो उन बस्तियों में मुंतकिल कर सकता है, क्योंकि इसको परदेश नहीं कहा जाता। तो शहर की करीबी जो बस्तियां हैं उनको परदेश नहीं कहा जाता, वहां बेवतनी साबित नहीं होती। तो गुर्बत का माना है परदेश और बेवतन होना। तो कहते हैं वफी कुरल मिस्रिल करीबती, और शहर की करीबी बस्तियों में, ला ततहक्कुल गुर्बतु, परदेश मुतहक्किक नहीं होता, परदेश साबित नहीं होता, वहां मुंतकिल कर सकता है। भाई यहां पर जो इबारत है लिअन्नल गरीबत तुअज़ा, इस इबारत पर इत्मीनान नहीं होता भाई, इसलिए क्योंकि आजा यूजी ईजाअन बाब इफाल हो, इसका माना होता है दूसरे को तकलीफ देना जी। दूसरे को तकलीफ देना, तो अगर तो यूं होती इबारत लिअन्नल गुर्बत तुअज़ी, लिअन्नल गुर्बत तुअज़ी, तो इस सूरत में इबारत बेहतरीन हो जाती, माना क्या बन जाता, लिअन्नल गुर्बत तुअज़ी, इसलिए क्योंकि परदेश जो है, परदेशी होना तुअज़ी, ये अजियत देता है। सफर में इंसान तकलीफ में होता है, भाई चाहता है जल्द से जल्द अपने वतन पहुंच जाऊं, लेकिन हिदाया के तमाम नुस्खों में ये इबारत इसी तरह है, लिअन्नल गरीबता तुअज़ा भाई, या यूं होता लिअन्नल, अगर गरीबा को इसी तरह रखें लिअन्नल गरीबता तअज़ा, तअज़ा आज़ा यूजी का माना है दूसरे को तकलीफ देना और तअज़ा का माना है खुद तकलीफ महसूस करना, तो लिअन्नल गरीबता तअज़ा, इसलिए क्योंकि परदेश वाली औरत जो है तअज़ा वो तकलीफ महसूस करती है। बात समझ में आ गई, लेकिन बहरहाल हिदाया के तमाम नुस्खों में इबारत इसी तरह है, लिअन्नल गरीबता तुअज़ा, तो लफ्जी तर्जमा बनेगा लिअन्नल गरीबता तुअज़ा, परदेश वाली औरत जो है तुअज़ा, उसको अजियत दी जाती है, यानी वो अजियत पाती है, वो उसको अजियत होती है, ये फिर तर्जमा कर लें भाई। आगे देखिए भाई, قال ومن تزوج امرأة ثم اختلف في المهر فالقول قول المرأة الى تمام مهر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل وان طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله
بھئی یہ بڑا مشکل مسئلہ آ گیا اس کو توجہ سے سمجھ لیں
भाई। सूरत यह है मियां बीवी के अंदर महर के अंदर इख्तिलाफ आ गया, तो कभी कभार यह इख्तिलाफ या तो महर की मिकदार में होगा, खावंद कहेगा महर 1000 दिरहम हमने मुकरर किया था और बीवी कहती है कि नहीं महर हमने 2000 दिरहम मुकरर किया था, तो देखो मिकदार के अंदर इख्तिलाफ आया, और कभी कभार असले मुसम्मा में ही इख्तिलाफ आ जाएगा, मसलन बीवी कहती है कि महर मुकरर किया था हमने, खावंद कहते हैं नहीं हमने सिरे से निकाह में कोई महर मुकरर ही नहीं किया था, और बीवी क्या कह रही है हमने महर मुकरर किया था, फिर चाहे वो मिकदार जिक्र करे या ना करे, दोनों सूरतों में मसला एक ही रहता है। तो ये पहली सूरत क्या इख्तिलाफ की कि मिकदार में इख्तिलाफ होता है, इस पर तो दोनों में इतफाक है कि महर मुकर्रर किया था लेकिन मिकदार में इख्तिलाफ है। दूसरी सूरत कि एक कहता है महर मुकर्रर किया था और दूसरा कहता है महर सिरे से हमने मुकर्रर ही नहीं किया था, यह दूसरी सूरत हो गई। फिर यह इख्तिलाफ या तो दोनों की जिंदगी में होगा या दोनों में से एक की मौत के बाद उसके वारिस इख्तिलाफ करते हैं या दोनों की मौत के बाद दोनों के वारिस आपस में इख्तिलाफ करेंगे। तवज्जो है, फिर समझो, महर के अंदर इख्तिलाफ आया, या तो इख्तिलाफ महर की मिकदार में होगा या असले महर में ही इख्तिलाफ होगा कि महर मुकरर भी किया था या मुकरर नहीं किया था, फिर ये इख्तिलाफ या तो दोनों की जिंदगी में होगा या दोनों में से एक का इंतकाल हो चुका है और वारिसों के साथ ये इख्तिलाफ हो रहा है या दोनों का इंतकाल हो चुका है और दोनों के वारिसों में ये इख्तिलाफ हो रहा है या फिर ये इख्तिलाफ जो आपस में कर रहे हैं ये सोहबत से पहले इख्तिलाफ होगा या सोहबत के बाद इख्तिलाफ होगा। बात समझ में आ गई, तो ये इख्तिलाफ या तो दोनों की जिंदगी में होगा या दोनों में से एक मर चुका है उसके वारिस इख्तिलाफ कर रहे हैं या दोनों ही मर चुके हैं और दोनों के वारिस आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं, और फिर ये इख्तिलाफ जो है सोहबत से पहले इख्तिलाफ होगा या खावंद के सोहबत करने के बाद इख्तिलाफ हुआ होगा। तो कई सूरतें बन जाती हैं इस मसले के अंदर, साहिब हिदाया इन सब को तफसील से बयान फरमाएंगे भाई। तो कहते हैं वमन तज़व्वज इमरातन, और जिस शख्स ने निकाह किया किसी औरत से, सुम इख्तलफा फिल महरी, फिर इन दोनों का इख्तिलाफ हो गया महर में, दोनों का महर में इख्तिलाफ हो गया, तो कहते हैं फल कौलु कौलुल मरअति इला तमामी महरी मिसलिहा, तो वो कौल जो मुअतबर है वो औरत का कौल है, इला तमामी महरी मिसलिहा उसके महर मिसल के पूरा होने तक, वल कौलु कौलु ज़ौजी फी मा ज़ाद अला महरिल मिसली, और वो कौल जो मुअतबर है वो खावंद का कौल है उस मिकदार में जो महर मिसल पर ज़ाइद है।
जो महरे मिसल पर जायद है भाई। पहले यहां एक दो बातें समझ लीजिए। तरीका दावा, दावा कैसे किया जाएगा। मसलन जैद के पास एक गाड़ी है, एक और शख्स आया और आकर उसने दावा कर दिया कि यह गाड़ी मेरी है। तो अब यह काजी के पास जब मुकदमा पेश होगा तो उसका तरीका यह है, हमेशा याद रखना कि जो दावा करने वाला है यानी मुद्दई जो है उसके जिम्मे बयेना होती है। काजी उस शख्स से कहेगा कि तुमने दावा किया है यह गाड़ी मेरी है, तो तुम दो गवाह पेश करो, दो मर्द गवाह पेश करो या एक मर्द और दो औरतें बतौरे गवाह के पेश करो। तो मुद्दई के जिम्मे हमेशा बयेना होती है। याद रखो हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल बयेनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, कि बयेना जो है वो मुद्दई के जिम्मे है यानी गवाह पेश करना मुद्दई के जिम्मे है। वल यमीनु अला मन अनकरा, और कसम उस शख्स पर आएगी जो इनकार कर रहा है। उस शख्स ने क्या दावा किया, जैद के पास गाड़ी थी, उस शख्स ने आकर दावा किया कि यह गाड़ी मेरी है और जैद इनकार कर रहा है, तो वो शख्स हुआ मुद्दई और जैद हुआ मुनकिर। और याद रखो बयीना पेश करना ये मुद्दई के जिम्मे होता है, और अगर वो बयीना पेश न कर सके तो फिर इस सूरत में जो मुनकिर होता है वो कसम खाता है। और ये भी याद रखना हमेशा कि कसम हमेशा इनकार पर खाई जाती है, कसम हमेशा इनकार पर खाई जाती है यानी मुद्दई के दावे का इनकार उसमें किया जाता है। अब यहां पर किस तरह होगा, उस शख्स ने दावा किया है यह गाड़ी मेरी है, वो गाड़ी जो किसके कब्जे में थी, जैद के कब्जे में थी, एक और शख्स आया और उसने दावा कर दिया यह गाड़ी मेरी है, तो वह मुद्दई हुआ, तो काजी उससे कहेगा कि तुम गवाह पेश करो। वो कहता है काजी साहब मेरे पास गवाह तो कोई नहीं, अलबत्ता मैं कसम खाने को तैयार हूं ये मेरी गाड़ी है। काजी कहेगा नहीं, तुम मुद्दई हो, मुद्दई की कसम का कोई एतबार नहीं, मुद्दई के जिम्मे सिर्फ गवाह पेश करना है। कसम जो मोतबर है और कौल जो मोतबर है वो मुनकिर का है भाई, तो मुद्दई के पास कोई गवाह नहीं है। तो फिर काजी मुनकिर की तरफ यानी जैद की तरफ मुतवज्जे होकर कहेगा कि तुम कसम खाओ। और कसम मैंने आपको बतलाया वो हमेशा नफी पर होती है, इनकार पर होती है। तो जैद ये कसम नहीं खाएगा कि वल्लाह काजी साहब ये गाड़ी मेरी है, ये तो इसके अंदर इस बात कर रहा है, एक चीज को साबित कर रहा है। कसम इस बात के लिए नहीं होती, इस बात के लिए बयेना चाहिए। जैसे वो आदमी कह रहा है ये गाड़ी मेरी है तो उसके लिए क्या चाहिए था, बयेना चाहिए थी। तो लिहाजा जैद इस बात पर कसम नहीं खाएगा, नफी पर कसम खाएगा। उस शख्स ने क्या कहा था, यह गाड़ी मेरी है, तो जैद कसम उठाएगा कि वल्लाह काजी साहब यह गाड़ी इस आदमी की नहीं है जी। तो देखा कसम किस पर हुई, नफी पर हुई। तो यह हमेशा जाब्ता याद रखना कि बयेना इस बात पर होती है, एक चीज को साबित करने के लिए बयेना होती है, और इनकार पर हमेशा कसम होती है भाई, कसम होती है। तो अब जैद अगर कसम खा लेता है तो फिर याद रखो काजी उसके हक में फैसला कर देगा, और अगर जैद ने कसम खाने से इनकार कर दिया तो फिर इस सूरत में मुद्दई के हक में काजी फैसला कर देगा और गाड़ी मुद्दई के हवाले कर दी जाएगी। मुद्दई बयीना पेश कर दे तब भी उसका दावा साबित हो गया, गाड़ी उसके हवाले कर देंगे। और अगर मुद्दा अलै यानी मुनकिर ने कसम खा ली तो फिर काजी उसके हक में फैसला कर देगा, और अगर उसने कसम से इनकार कर दिया तो इस सूरत में भी काजी मुद्दई के हक में फैसला कर देगा। मालूम हुआ कि कसम किसकी मोतबर है, मुनकिर की, और मुद्दई जो है वो सिर्फ बयीना पेश कर सकता है, उसके कौल और उसकी कसम का कोई एतबार नहीं। तो ये इबारतें जगह जगह इस तरह की आप फिका की किताबों में पढ़ते हैं, अल कौलु कौलुहू, के कौल इसी का मोतबर है, ये जगह जगह आएगा। माना इसका समझ लें, अल कौलु देखो अलिफ लाम आया, वो वाला कौल कौन सा कौल जो मोतबर है, जिसका एतबार किया जाएगा, कौलुहू वो इस आदमी का कौल है। और याद रखो जब भी फिका की किताबों में आ जाए कि अल कौलु कौलुहू, कि कौल मोतबर जो है वो इस आदमी का कौल है, तो साथ ही आप समझ जाएं मालूम हुआ ये मुनकिर है भाई। क्योंकि मुद्दाई के जिम्मे तो बयना होती है, उसके कौल और कसम का कोई एतबार नहीं, मुनकिर के कौल और कसम का एतबार है। तो जब भी किताब के अंदर यह आ जाए अलकौल कौलहू, आप समझ जाए ये शख्स मुनकिर है जिसकी बात की जा रही है, क्योंकि मुनकिर का कौल मोतबर होता है, लेकिन साथ कसम भी जरूरी है भाई। और फिर यह भी याद रखना, जैसे मैंने आपको बतलाया कि दावा हमेशा इस बात के लिए होगा और कसम हमेशा नफी पर होगी, इसी तरह दावा हमेशा खिलाफ जाहिर पर होगा और कसम उस शख्स पर आएगी कि जाहिर जिसकी ताईद कर रहा हो, जाहिर हाल जिसका मुअय्यद हो उसका कौल मोतबर है, और जो दावा है वो हमेशा खिलाफ जाहिर होता है। मसलन देखो, ये गाड़ी जैद के कब्जे में थी, तो जाहिर हाल यही बतला रहा है कि जब यह गाड़ी जैद के कब्जे में है तो जैद ही की है भाई, जैद ही इसका मालिक है, तो जाहिर हाल किसकी ताईद कर रहा है, जैद की। और वो जो उस शख्स ने आकर दावा किया कि यह गाड़ी मेरी है, वो खिलाफ जाहिर है। तो जो भी चीज खिलाफ जाहिर होगी वहां बयना आएगी, और जाहिर हाल जिस आदमी की ताईद कर रहा हो उसका कौल मोतबर होगा, मालूम हो वो मुनकिर है भाई
जी।
बात समझ में आ गई। तो अब देखिए भाई, कहते हैं वह मन तज़व्वज इम्रअतन सुम्मा इख्तलफा फिल महरी, और जिसने किसी औरत से निकाह किया फिर दोनों का इख्तिलाफ हो गया महर में। मैंने बताया यहां कई सूरतें हैं भाई इख्तिलाफ की, या तो इख्तिलाफ होगा महर की मिकदार में, खावंद अलग मकदार जिक्र कर रहा है बीबी अलग मकदार, या इख्तिलाफ होगा असल महर के अंदर ही, खावंद कहता है महर मुकर्रर ही नहीं किया था, बीबी कहती है नहीं महर मुकर्रर किया था, चाहे वो मकदार साथ जिक्र करे या ना करे कि इतना मुकर्रर किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल इख्तिलाफ असल महर में ही हो गया, खावंद कहता है महर मुकर्रर ही नहीं किया था। और फिर उसके बाद ये इख्तिलाफ या तो दोनों की जिंदगी में ही होगा, या दोनों में से एक का इंतकाल हो चुका है और उसके वारिस आकर इख्तिलाफ कर रहे हैं, और या दोनों का इंतकाल हो चुका है मियां और बीवी का और दोनों के वारिस आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं। फिर इसी तरह ये इख्तिलाफ जो है खावंद के सोहबत करने से पहले इख्तिलाफ होगा या खावंद के बीवी से सोहबत करने के बाद इख्तिलाफ होगा। तो कई सूरतें यहां बनती हैं, साहिब हिदाया देखो हर एक को तफसील से बयान करेंगे। ये जो पहली सूरत है ये जब जिंदगी में ही निकाह की हालत में ही आपस में इख्तिलाफ हो गई, दोनों जिंदा हैं और निकाह की हालत में ही आपस में इख्तिलाफ करते हैं, ये वो सूरत जिक्र हो रही है। लेकिन याद रखना, अगर खावन तलाक दे चुका है सोहबत के बाद, या दोनों में से एक का इंतकाल हो गया है और उसके वारिस आकर इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो भी सूरतें मसला इसी तरह होगी। गोया यहां चार सूरतें का यही हुक्म है, ये जो बयान करने लगे हैं पहली सूरत, ये चार सूरतों में यही हुक्म होगा। पहली सूरत क्या, कि निकाह की हालत में आपस में इख्तिलाफ हो गया, तलाक अभी नहीं दी वैसे ही आपस में इख्तिलाफ हो गया और महर की मकदार में इख्तिलाफ हुआ है। तवज्जो है, ये जो पहली सूरत जिक्र कर रहे हैं इसमें महर की मकदार में इख्तिलाफ है। बीवी मसलन कह रही है कि महर 2000 मुकर्रर किया था, 2000 दिरहम, और खावन कह रहे हैं नहीं महर 1000 दिरहम मुकर्रर किया था। तो किस में इख्तिलाफ है, महर की मकदार में, और किस वक्त इख्तिलाफ है, दोनों की जिंदगी में। चाहे अभी निकाह हो तब भी यही हुक्म, निकाह में इख्तिलाफ हो रहा है, चाहे खावन तलाक दे चुका है सोहबत करने के बाद अब इख्तिलाफ हो रहा है, उसका भी यही हुक्म। और अगर खावंद या बीवी में से एक का इंतकाल हो चुका है और उसके वारिस आकर इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो उसका भी यही हुक्म है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह मन तज़व्वज इम्रअतन, और जिस शख्स ने किसी औरत से निकाह किया, सुम्मा इख्तलफा फिल महरी, फिर उन दोनों ने आपस में महर के अंदर इख्तिलाफ कर लिया, फल कौल कौलुल मरअती, तो वो कौल जो मोतबर है, कौलुल मरअती वो औरत का कौल है, इला तमामी महर मिसलिहा उस औरत के महर मिसल के पूरा होने तक, वल कौल कौलु ज़ौजी और वो कौल जो मोतबर है वो खावंद का कौल है, फीमा ज़ाद अला महरिल मिसली वो जो जायद है महर मिसल पर। वो जो जायद है महरे मिसल पर, ये हमारे अइमा से ये मसला जिक्र है भाई, ये तरफेन के नजदीक है, इमाम साहब के नजदीक भी मसला इस तरह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक भी ये मसला इस तरह है भाई। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का आगे बतलाएंगे, उनके नजदीक खावंद का कौल मोतबर है, खावंद का कौल मोतबर है। अब इसके अंदर आप देखें, जरा गौर करें इबारत पर, कहते हैं फल कौल कौलुल मरअति इला तमामी महरी मिसलिहा, कि वो कौल जो मोतबर है वो औरत का कौल है उसके महर मिसल के पूरा होने तक। और मैंने बताया कौल किसका मोतबर होता है, मुनकिर का, किसका, मुनकिर का। मालूम हुआ औरत मुनकिर बन रही है। और आगे कहा वल कौल कौल ज़ौजी फी मा ज़ाद अला महरिल मिसली, और वो कौल जो मोतबर है वो खावंद का कौल है वो जो महर मिसल पर जायद हो। मालूम हुआ महर मिसल पर जायद हो तो खावंद मुनकिर बन रहा है, इसीलिए उसका कौल मोतबर। तो गोया इस मसले के अंदर बाज एतबार से देखा जाए तो बीवी मुनकिर है, बाज एतबार से देखा जाए तो खावंद मुनकिर है। जब बीवी मुनकिर है मालूम हुआ खावंद मुद्दई होगा, और जब खावंद मुनकिर है मालूम हुआ बीवी मुद्दईया होगी। बात समझ में आ गई। गोया इस मसले के अंदर बाज एतबार से देखें तो औरत मुद्दईया है और खावंद मुनकिर है, दूसरे एतबार से देखें तो खावंद मुद्दई है और औरत मुनकिरा है भाई। अब हमारे अइम्मा से यह मसला तो जिक्र है लेकिन उन्होंने इस मसले की मजीद तशरीह और वजाहत नहीं की भाई, यानी उनके इस कौल में इजमाल है। उलमा हैरान है कि इसका क्या माना है, तो फुकाहा फिर इसकी तशरीह करते हैं। हमारे जो किबार फुकाहा हैं वो इन्हीं अइम्मा के जो उसूल होते हैं उन्हीं उसूलों की रोशनी में इस तरह का कोई मुजमल कौल या मुजमल मसला हो तो फिर हमारे किबार फुकाहा उन्हीं अइम्मा के उसूलों की रोशनी में उस मसले की तशरीह करते हैं। इसको कहते हैं तखरीज भाई। क्या कहते हैं? तखरीज। आप जगह जगह पढ़ते होंगे तखरीज भाई, तो तखरीज इसे कहते हैं कि अइम्मा से कोई कौल या कोई मसला जिक्र है और उसके अंदर इजमाल है, वो मुजमल है, उसके अंदर कोई तफसील वगैरह नहीं है, तो फिर उलमा उन्हीं अइम्मा के उसूलों की रोशनी में उस मसले को बयान फरमाते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, इसको तखरीज कहते हैं। तो यह मसला भी अइम्मा से मनकूल तो है लेकिन अइम्मा ने इसकी कोई तशरीह वगैरह नहीं की, तो हमारे फुकहा ने इसमें गौर किया और सूरत मसला बयान फरमाई कि यह किस तरह होगा। यह आगे साहिब हिदाया भी आगे बयान फरमाएंगे, वो आपको बताएंगे कि मसलन मैंने बताया कि यह कौन सा इख्तिलाफ जिक्र हो रहा है मिकदार के अंदर, और दोनों की जिंदगी में यह इख्तिलाफ हो रहा है, तो उसकी सूरत यह है। अस्हाबे तखरीज फरमाते हैं, वो फरमाते हैं इस मसले की सूरत यह है कि मसलन खावंद ने दावा किया है कि महर 1000 दिरहम था और बीवी कहती है महर 2000 दिरहम था, तो अब महरे मिसल को फैसल बनाया जाएगा, उसके जरिए फैसला किया जाएगा। खावंद ने कितना कहा है? 1000 दिरहम। तो अगर महरे मिसल वो खावंद की ताईद कर रहा है, यानी इस औरत का महरे मिसल 1000 या 1000 से भी कम है, तो फिर इस सूरत में खावंद का कौल मोतबर। और अगर औरत ने कितने का दावा किया है 2000, तो अगर महरे मिसल 2000 या 2000 से ज्यादा है तो फिर इस सूरत में महरे मिसल औरत की ताईद कर रहा है, लिहाजा उसका कौल मोतबर होगा। तवज्जो है, वो इस जाब्ते लगाओ जो मैंने बतलाए थे भाई। मैंने बतलाया भाई कि कौल उस आदमी का मोतबर होता है जाहिर हाल जिसकी ताईद करता है। खावंद ने कितना कहा है मसलन 1000 दिरहम, और औरत का महरे मिसल भी 1000 या 1000 से कम है, तो इस सूरत में जाहिर हाल किसकी ताईद कर रहा है? खावंद की ताईद कर रहा है। खावंद भी 1000 कह रहा है और महरे मिसल भी क्या है 1000 या 1000 से कम है, तो इस सूरत में खावंद का कौल मोतबर होगा। खावंद अगर कसम खा लेगा तो उसके हक में फैसला हो जाएगा। खावंद क्या कसम खाएगा? खावंद ये कसम नहीं खाएगा कि काजी साहब वल्ला महर 1000 है, नहीं नहीं, ये तो इस बात कर रहा है, और कसम नफी पर होती है, इस बात के लिए बयना चाहिए। खावंद यहां बीवी के दावे की नफी पर कसम खाएगा। खावंद ने महर कितना जिक्र किया है? 1000। बीवी ने कितना जिक्र किया है? 2000। और महरे मिसल कितना है इस औरत का? 1000 या 1000 से भी कम है। तो जाहिर हाल किसकी ताइद कर रहा है? खावंद की। लिहाजा खावंद का कौल मोतबर होगा। अब खावंद कसम खाकर कहेगा कि काजी साहब वल्लाह इस औरत का महर 2000 दिरहम नहीं है। बात समझ में आ गई? तो खावंद का कौल मोतबर। और अगर औरत ने दावा किया 2000 का और महरे मिसल भी 2000 या इससे ज्यादा है, तो इस सूरत में देखो महरे मिसल किसकी ताइद कर रहा है? औरत की ताइद कर रहा है। तो लिहाजा अब जाहिर हाल औरत के मुआफिक है, लिहाजा औरत का कौल मोतबर है। अब औरत अगर कसम खा लेगी तो उसका दावा साबित हो जाएगा। क्या कसम खाएगी? वो खावंद के दावे की नफी पर खाएगी, अपने दावे के इस बात पे कसम नहीं खाएगी। उसके लिए तो बयना चाहिए। तो औरत कहेगी कि वल्लाह काजी साहब मेरा महर 1000 दिरहम नहीं है, तो उस औरत के हक में फैसला हो जाएगा। और अगर इन दोनों में से मियां बीवी में से कोई एक गवाह पेश कर देता है, तो जो भी गवाह पेश कर दे दोनों में से, उसके गवाह कबूल कर लिए जाएंगे। चाहे महरे मिसल खावंद की ताइद कर रहा हो, चाहे महरे मिसल औरत की ताइद कर रहा हो, दोनों सूरतों में अगर खावंद ने गवाह पेश कर दिए तो खावंद के हक में फैसला हो जाएगा, और अगर औरत ने गवाह पेश कर दिए तो औरत के हक में फैसला हो जाएगा। मैंने बताया इस मसले के अंदर खावंद और बीवी दोनों बाज एतबार से मुद्दाई हैं और बाज एतबार से मुनकिर हैं, और मुद्दाई के जिम्मे क्या होता है? बयना। लिहाजा दोनों में से जो भी बयना ले आएगा उसका बयना कबूल कर लिया जाएगा, चाहे महरे मिसल एक की ताइद कर रहा हो चाहे दूसरे की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो बयना ले आया तो बयना के जरिए उसके हक में फैसला हो जाएगा। और अगर दोनों ने बयना पेश कर दिए, खावंद भी दो गवाह ले आया, बीवी भी दो गवाह ले आई, तो फिर इस सूरत में याद रखो उसका बयना कबूल किया जाएगा जिसका दावा खिलाफ जाहिर होगा, जिसका दावा खिलाफ जाहिर होगा। मैंने बताया था मसलन औरत ने कितने का दावा किया है? 2000 का, और महरे मिसल भी कितना है इस औरत का? 2000 या 2000 से ज्यादा। तो जाहिर हाल किसकी ताइद कर रहा है? औरत की ताइद कर रहा है। लिहाजा बयना खावंद का कबूल किया जाएगा, क्योंकि जाहिर हाल जब औरत की ताइद कर रहा है तो मालूम हुआ खावंद का दावा खिलाफ जाहिर है, और बयना किसकी कबूल की जाती है? जिसका दावा खिलाफ जाहिर हो, जिसका दावा जाहिर के मुताबिक हो उसका कौल मोतबर होता है, और दूसरे का बयना। मसलन जैद के कब्जे में गाड़ी थी, दूसरे आदमी ने आकर दावा किया है, तो जाहिर क्या है? गाड़ी किसकी है? जैद की है, क्योंकि उसके कब्जे में है, और दूसरे शख्स ने आकर जो दावा किया वो खिलाफ जाहिर है, तो इसलिए उससे बयना मांगा जाएगा। यहां पर भी महरे मिसल औरत की ताइद कर रहा है तो खावंद का दावा खिलाफ जाहिर हुआ, लिहाजा अगर बयना दोनों लाए हैं तो फिर जिसका बयना खिलाफ जाहिर होगा वो कबूल किया जाएगा। तो खावंद का बयना इस सूरत में खिलाफ जाहिर है, वो कबूल कर लिया जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर दोनों बयना लाए हैं लेकिन जाहिर हाल खावंद का मुअय्यद है, खावंद ने 1000 दिरहम महर कहा है और औरत का महर मिसल भी 1000 या 1000 से कम है, तो इस सूरत में औरत का दावा खिलाफ जाहिर है, वो तो 2000 का दावा कर रही है, लिहाजा इस सूरत में औरत का बयना कबूल किया जाएगा। तो हासिल कलाम क्या? मिकदार के अंदर इख्तिलाफ हुआ है, खावंद 1000 का दावा कर रहा है और औरत 2000 का दावा कर रही है, तो फिर महरे मिसल को फैसल बनाएंगे, उसके जरिए फैसला करेंगे। अगर महरे मिसल खावंद की ताइद कर रहा है, खावंद का दावा 1000 और महरे मिसल भी 1000 या 1000 से कम, तो फिर खावंद का कौल कसम के साथ मोतबर होगा। वो कहेगा वल्लाह काजी साहब इस औरत का महर 2000 नहीं है। और अगर वो महरे मिसल औरत की ताइद कर रहा है, औरत ने 2000 का दावा किया है और महरे मिसल भी 2000 या 2000 से ज्यादा है, तो फिर इस सूरत में औरत का कौल जो है उसका एतबार किया जाएगा। वो कसम खाकर कहेगी कि वल्लाह काजी साहब मेरा महर 1000 नहीं है और इस सूरत में उसके हक में फैसला कर दिया जाएगा, और दोनों में से अगर कोई एक भी बयना ले आता है उसके बयना को कबूल कर लेंगे, क्योंकि दोनों में से हर एक मीन वजह मुद्दाई है भाई। और अगर दोनों ही बयना ले आते हैं तो फिर इस सूरत में जिसका बयना खिलाफ जाहिर होगा उसका बयना कबूल किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वमन तज़व्वुजा मरअतन, और जिस शख्स ने किसी औरत से निकाह किया, सुम्मा इख्तलफा फिल महर, फिर उन दोनों ने आपस में इख्तिलाफ कर लिया महर में, फल कौलु कौलुल मरअति, तो वो कौल जो मुअतबर है वो औरत का कौल है, इला तमामी महर मिसलिहा, उसके महर मिसल के पूरा होने तक, वल कौलु कौलु ज़ौजी, और वो कौल जो मुअतबर है वो खावंद का कौल है, फी मा ज़ाद अला महरिल मिसली, वो जो महर मिसल पर जायद है। देखो कितना मुश्किल मसला था, अस्हाबे तखरीज ने उसकी सूरत बयान फरमा दी। मतन में तो सिर्फ इतना आया, औरत का कौल मुअतबर है महरे मिसल के पूरा होने तक, और खावंद का कौल मुअतबर है महरे मिसल से जायद के अंदर। अब इससे तो कुछ मसले का पता नहीं चल रहा, क्या माना है इस कौल का? अस्हाबे तखरीज ने सूरत बयान कर दी। देखो क्या कहा, औरत का कौल मुअतबर है महरे मिसल के पूरा होने तक, यानी औरत ने 2000 का दावा किया है और महरे मिसल भी 2000 या 2000 से ज्यादा है, तो देखो महरे मिसल के पूरा होने तक औरत का कौल मुअतबर है, और महरे मिसल से जायद में किसका कौल मुअतबर? खावंद का। मसलन खावंद ने कितने का दावा किया है? 1000, और महरे मिसल 1000 या 1000 से कम है, तो मालूम हुआ खावंद तो बराबर या जायद का दावा कर रहा है, तो इस सूरत में खावंद का कौल मुअतबर है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फल कौलु कौलुल मरअति इला तमामी महरी मिसलिहा, तो वो कौल जो मुअतबर है वो औरत का कौल है उसके महरी मिसल के पूरा होने तक, वल कौलु कौलु ज़ौजी फी मा ज़ाद अला महरिल मिसली, और वो कौल जो मुअतबर है वो खावंद का कौल है वो जो महरी मिसल पर जायद है। भाई यहां यह भी समझ लो, दोनों में से हर एक मुद्दाई कैसे बनता है और मुनकिर कैसे बनता है? जब औरत ने दावा किया 2000 का और खावन दावा कर रहा है 1000 का, तो गोया औरत ने जो 2000 का दावा किया इनमें से 1000 तो खावन भी तस्लीम कर रहा है। हां ये जो 1000 जायद का औरत दावा कर रही है, तो औरत इस जायद की मुद्दाइया हुई और खावन इस जायद का इनकार कर रहा है कि 1000 ही है, इससे ज्यादा महर नहीं, तो औरत इस ज्यादती की मुद्दाइया हुई और खावंद इस ज्यादती का मुनकिर हुआ, तो इस एतबार से औरत मुद्दाइया और खावंद मुनकिर है। अब खावंद किस तरह मुद्दाई है और औरत किस तरह मुनकिर है भाई, क्योंकि दोनों मिन वजह मुद्दाई भी हैं और मुनकिर भी हैं। अब खावंद कैसे मुद्दाई है? कहते हैं देखो जब खावंद ने 1000 कहा, तो खावंद ने मसलन 1000 का दावा किया है और औरत का महर मिसल 2000 या उससे भी ज्यादा है, तो गोया खावंद दावा कर रहा है कि महर मिसल तो ज्यादा ही है लेकिन इस औरत ने मेरे लिए कम ही कर दी थी, 1000 में ही मान गई थी जी। तो गोया खावंद मुद्दाई है कम ही करने का कि औरत ने क्या कर दिया है, कम ही कर दिया मेरे लिए, और औरत इनकार कर रही है मैंने कोई कमी नहीं की। तो देखो खावन मुद्दाई हुआ कमी का और औरत कमी की मुनकिरा हुई भाई, तो दोनों बाद एतबार से मुद्दाई हैं और बाद एतबार से मुनकिर हैं भाई। आगे देखिए व इन तल्लकहा कबल दुखूली बिहा, और अगर खावन ने इस औरत को तलाक दे दी इसके साथ सोहबत करने से पहले ही, फल कौलु कौलुहू फी निसफिल महरी, तो फिर वो कौल जो मुअतबर है वो खावन का कौल है, फी निसफिल महरी निसफे महर में, अगर सोहबत से पहले तलाक देता है तो याद रखो तरफेन के नजदीक खावंद का कौल मुअतबर है। वकाल अबू यूसुफ रहिमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं, अल कौलु कौलुहू बाद तलाकी व कबलहू, कि कौल जो मुअतबर है वो खावंद ही का कौल है, बाद तलाकी व कबलहू, तलाक के बाद, व कबलहू और तलाक से पहले, यानी हर सूरत में। वो फरमाते हैं तलाक से पहले इख्तिलाफ हो जाए जिंदगी के अंदर या तलाक के बाद इख्तिलाफ हो जाए, और चाहे सोहबत से पहले इख्तिलाफ हो जाए या सोहबत के बाद इख्तिलाफ हो जाए, तमाम सूरतों में वो फरमाते हैं खावंद का कौल मुअतबर है। वजह यह कि खावंद कम का दावा कर रहा है और औरत ज्यादा का दावा कर रही है, खामन ने 1000 का दावा किया, औरत ने 2000, तो उस 2000 के अंदर भी 1000 तो आ गए, तो जो कम है वो तो यकीनी है, इतना तो है ही है, ज्यादा के अंदर शक है, पता नहीं वो जायद है या नहीं, तो जो यकीनी है वो साबित होगा, यानी खावंद का कौल मोतबर होगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल कौल कौलहू बाद तलाक व कबलहू, कि वो कौल जो मोतबर है वो खावंद का कौल है तलाक के बाद भी और तलाक से पहले भी, इल्ला अन यातिया बिशयइन क़लीलिन, मगर ये कि खावंद थोड़ी सी चीज ले आए, ले आए यानी जिक्र कर दे, लाने से मुराद क्या है, जिक्र करना, तो खावंद का कौल मोतबर है, इल्ला अन यातिया बिशयइन क़लीलिन, मगर यह कि खावंद कोई थोड़ी सी चीज जिक्र कर दे तो फिर खावंद का कौल मोतबर नहीं। अब इस थोड़ी सी चीज से क्या मुराद है, बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि मुराद यह है कि खावंद ने 10 दिरहम से भी कम महर जिक्र कर दिया, खावंद ने 10 दिरहम से भी कम महर जिक्र कर दिया, तो कहते हैं अब खावंद का कौल मोतबर नहीं, क्योंकि 10 दिरहम से कम तो शरान महर हो ही नहीं सकता भाई जी। लेकिन साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे नहीं, सही यह है कि शेए कलील से मुराद यह है खावंद ऐसी चीज जिक्र करे कि इस जैसी औरत उमूमन और आदतन इतने महर में राजी नहीं होती। शेख कलील से क्या मुराद है कि इस जैसी औरत इतने थोड़े महर में निकाह के लिए राजी नहीं होती, तो ऐसी चीज अगर खावंद ने बयान कर दी तो फिर खावंद के कौल का एतबार नहीं है भाई। तो यह माना है, कहते हैं इल्ला अन यातिया बिशयइन क़लीलिन, मगर यह कि खावंद कोई मामूली सी चीज जिक्र करे, व मानाहू, और माना इसका यह है, साहिब हिदाया बयान कर रहे हैं, मा ला युतआरफ महरन लहा, कि ऐसी चीज जो मुतआरफ नहीं है यानी राइज नहीं है महरन लहा, उस औरत के लिए बतौर महर के, आदतन ऐसी औरत इतने महर पर राजी नहीं होती, तो इससे मुराद वो चीज है कि जैसी औरत के लिए बतौर महर के मुतआरफ नहीं है, हुआ सहीह, यही कौल सही है। बाजों ने तो क्या कहा था कि शेख कलील से मुराद यह है कि खावन 10 दिरहम से कम जिक्र करे, साहिब हिदाया बतलाने नहीं, हुआ सही, यह कौल सही है कि ऐसी चीज खावन बयान करे जो बेशक 10 से ज्यादा है लेकिन इस जैसी औरत आदतन इतने महर पर राजी नहीं होती, तो यह शेख कलील है भाई। ली अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह की दलील यह है, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं कि हर हाल में खावंद ही का कौल मोतबर है, इल्ला ये कि वो क्या करे, शेए कलील बयान करे, फिर खावंद का कौल मोतबर नहीं। तो अब उनकी दलील आ गई, ली अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह की दलील यह है कि अन अल मरअत तद्दई ज्यादता, कि औरत जो है ज्यादा का दावा कर रही है, वह ज़ौज युनकिरु, और खावंद उस ज्यादती का इनकार कर रहा है, वल कौल कौलुल मुनकिरी मा यमीनिही, और वो कौल जो मोतबर होता है वो मुनकिर का कौल होता है, मा यमीनिही, साथ उसकी कसम के, औरत ज्यादती का दावा कर रही है और खावंद इनकार कर रहा है तो खावंद मुनकिर हुआ और मुनकिर का कौल मोतबर होता है, लिहाजा यहां हर हाल में खावंद ही का कौल मोतबर है, औरत का कौल मोतबर नहीं है भाई। तो कहते हैं वल कौल कौलुल मुनकिरी मा यमीन ही, और वो कौल जो मोतबर होता है वो मुनकिर का कौल होता है साथ उसकी कसम के, इल्ला अन यातिया बिशयइन युकज्जिबुहु ज़ाहिरु फीही, मगर यह कि वो कोई ऐसी चीज ले आए यानी कोई ऐसी चीज जिक्र कर दे, युकज्जिबुहु ज़ाहिरु फीही, कि जाहिर उसको उसमें झुटला रहा हो। मसलन खावन ने 50 दिरहम जिक्र कर दिया, भाई इस जैसी औरत तो 50 दिरहम के अंदर कभी भी इतने महर के अंदर निकाह पर राजी नहीं होगी, तो जाहिर हाल खावंद को झुटला रहा है, जाहिर हाल क्या कर रहा है, खावंद को झुटला रहा है कि तुम इतना थोड़ा महर जिक्र कर रहे हो, भाई इस जैसी औरत तो इतने महर में कभी भी निकाह के लिए आमादा नहीं होती। तो कहते हैं मुनकिर का कौल जो है वो मोतबर होगा उसकी कसम के साथ, इल्ला अन यातिया बिशयइन, मगर ये कि वो कि ऐसी चीज ले आए यानी कोई ऐसी चीज जिक्र कर दे, युकज्जिबुहु ज़ाहिरु फीही, कि उसके अंदर जाहिर उसको झुटला रहा हो, वहां जा, और ये इस वजह से, वहां, और ये इस वजह से यानी हमने खावन के कौल का एतबार किया और महरे मिसल को हकम नहीं बनाया। भाई तरफैन ने तो महरे मिसल के जरिए फैसला किया था, तवज्जो है, मैंने पूरी तफसील बयान कर दी कि महरे मिसल देखेंगे 1000 के बराबर या उससे कम हो तो खावन का कौल मोतबर, और महरे मिसल अगर 2000 के बराबर या उससे ज्यादा हो तो औरत का कौल मोतबर है। तो तरफैन ने किसको फैसल बनाया था, किसके जरिए फैसला किया था, महरे मिसल के जरिए। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमने महरे मिसल के जरिए फैसला नहीं किया बल्कि खावंद के कौल का एतबार किया है। उसकी वजह बतलाने लगे हैं, वजह समझ लो, आपको वजह बतलाएंगे। कहते हैं महरे मिसल निकाह में तब आता है जब मुसम्मा न हो, जब मुकर्ररा महर न हो या मुकर्ररा महर में कोई खराबी आ जाए तो फिर मुकर्ररा महर नहीं आता, फिर हम महरे मिसल की तरफ चले जाते हैं। यानी महरे मिसल की तरफ हमें जरूरत की वजह से जाना पड़ता है। वजह यह कि निकाह महर के बगैर नहीं हो सकता, और यहां मुसम्मा, मसलन मुसम्मा मौजूद ही नहीं है। मुसम्मा एक सूरत यह है ना, निकाह किया है लेकिन महर सिरे से जिक्र ही नहीं किया, तब भी क्या आ जाता है, महरे मिसल, क्योंकि निकाह बगैर महर के नहीं हो सकता। निकाह के अंदर महर जिक्र न किया जाए, महर ने आना जरूर है, तो फिर महरे मिसल आ जाता है जरूरत की वजह से, क्योंकि निकाह बगैर महर के नहीं हो सकता। लेकिन अगर निकाह के अंदर मुसम्मा जिक्र है तो फिर मुसम्मा ही आता है। तो यहां पर जब मुसम्मा जिक्र है, खावंद 1000 जिक्र कर रहा है, औरत 2000 जिक्र कर रही है, लेकिन औरत जो 2000 जिक्र कर रही है उसमें भी 1000 तो खावंद वाला आ रहा है, तो औरत जायद का दावा कर रही है, तो खावंद मुनकिर बन रहा है, और मुनकिर का कौल मोतबर होता है, इसलिए खावंद का कौल मोतबर होगा। बात समझ में आ गई, महरे मिसल की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी तरफ जरूरत की वजह से जाया जाता है जब महरे मुसम्मा ना हो या महरे मुसम्मा में फसाद आ जाए, कोई खराबी आ जाए, लेकिन यहां कोई फसाद और खराबी नहीं है। तो वो फरमाते हैं वहाजा, और ये इस वजह से है, यानी ये जो हमने खावंद के कौल का एतबार किया और महरे मिसल को हकम और फैसल नहीं बनाया, वो इस वजह से है, लिअन्न तकव्वुमा मनाफिउल बुज़ा, इसलिए क्योंकि मनाफिउल बुज़ा का कीमत वाला होना जरूरी, ये जरूरत की वजह से होता है। भाई मनाफिउल बुज़ा का कीमत वाला होना, यानी मुराद है महरे मिसल के साथ मनाफे बुजा की कीमत तो जरूर आएगी, भाई जब भी निकाह करोगे महर जरूर आएगा, लेकिन महरे मिसल कब आएगा, जरूरत की वजह से। नहीं तवज्जो, नहीं तवज्जो, भाई जब भी एक शख्स एक औरत से निकाह करेगा तो महर ने तो जरूर आना है, तो अगर ये मुसम्मा जिक्र कर देंगे तो वो मुकर्ररा मुसम्मा महर ही आ जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने मुसम्मा जिक्र न किया तो फिर निकाह के अंदर महर ने तो जरूर आना है, तो फिर उस मजबूरी की वजह से क्या आ जाएगा, महरे मिसल। तो महरे मिसल कब आता है, मजबूरी की हालत में, जरूरत की हालत में, वैसे महरे मिसल नहीं आता। तो यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं लिअन्न तकव्वुमा मनाफिउल बुज़ा, इसलिए क्योंकि मनाफिउल बुज़ा का कीमत वाला होना, यानी महरे मिसल के साथ, ये कैद साथ जरूर लगाना वरना आपके लिए इबारत समझना मुश्किल हो जाएगी। मनाफिउल बुज़ा का कीमत वाला होना किसके साथ, महरे मिसल के साथ, ये जरूरत की बिना पर होता है, वरना तो अगर मुसम्मा जिक्र हो तो फिर ये महरे मिसल के साथ कीमत नहीं लगाई जाएगी, मुसम्मा ही आएगा भाई। तो कहते हैं लि अन्न तकव्वुमा मनाफिउल बुज़ा ज़रूरीयुन, इसलिए क्योंकि मनाफिउल बुज़ा का महरे मिसल के साथ कीमत वाला होना ज़रूरीयुन, ये जरूरत की बिना पर होता है। फमता अमकन ईजाबु शैइन मिनल मुसम्मा, तो जब तक मुमकिन हो मुसम्मा में से कोई चीज वाजिब करना, ला युसारु इलैही, तो महरे मिसल की तरफ रुजू नहीं किया जाता। बात समझ में आ गई, जब मुसम्मा मौजूद है यहां उसको आप वाजिब कर सकते हैं, तो महरे मिसल की तरफ जाने की हाजत नहीं, उसकी तरफ हम कब जाते हैं, जरूरत की वजह से, और यहां कोई जरूरत नहीं है भाई। वलहुमा, और तरफैन की दलील यह है कि अन्नल कौला फी दआवी कौल यशहदु लहु जाहिरु, वही जाब्ता जो मैंने बतला दिया कि दावों के अंदर किसका कौल मोतबर होता है, ظاہر حال جس کی گواہی دے رہا ہو, ظاہر حال جس کی گواہی دے رہا ہو اس کا قول معتبر ہوتا ہے, اور بینہ جس کا دعویٰ خلاف ظاہر ہوتا ہے. تو یہی بیان کر رہے ہیں ولہما طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان القول فی الدعاوی کے دعووں کے اندر وہ قول جو معتبر ہوتا ہے قول من یشہد له الظاہر وہ اس شخص کا قول ہوتا ہے کہ ظاہر جس کی گواہی دے رہا ہو. والظاہر شاہد لمن یشہد له مہر المثل اور ظاہر تو گواہی دے رہا ہے لمن یشہد له مہر المثل جس کے لیے مہر مثل گواہی دے رہا ہے, مہر مثل جس کی تائید کر رہا ہے, ظاہر حال بھی اسی کی تائید کر رہا ہے. تو کہتے ہیں والظاہر شاہد اور ظاہر حال جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے لمن یشہد له مہر المثل جس کے لیے مہر مثل گواہی دے رہا ہے لأنه هو الموجب الاصلی فی باب النکاح اس لیے کیونکہ مہر مثل جو ہے یہ موجب اصلی ہے نکاح میں, یہ کیا ہے موجب اصلی ہے نکاح میں. بھئی موجب یعنی مقتضا جس کا نکاح تقاضا کرتا ہے, موجب اصلی یعنی نکاح اصل میں جس کا تقاضا کرتا ہے. بھئی یہاں پر دیکھو یہاں دلیل چل رہی ہے طرفین کی, اور کیا دلیل ذکر کی صاحب ہدایہ نے کہ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوجَبُ الْأَصْلِيُّ فِي بَابِ النِّكَاحِ اس لیے کیونکہ یہ مہر مثل یہی موجب اصلی ہے باب النکاح میں, یعنی اصل میں مہر مثل آیا کرتا ہے نکاح میں. نکاح میں اصل کیا آتا ہے؟ مہر مثل آتا ہے. لہذا جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر رہا ہے تو وہاں مہر مثل نے آنا ہے, لیکن یہ میاں بیوی آپس میں کوئی اور مسمہ ذکر کر دیتے ہیں, تو چونکہ یہ آپس میں راضی ہو گئے مسمہ پر اس مجبوری کی وجہ سے مسمہ آ گیا, ورنہ اصل میں یہاں کس نے آنا تھا؟ مہر مثل نے. تو طرفین فرماتے ہیں نکاح میں موجب اصلی مہر مثل ہے اسی نے آنا ہوتا ہے, لیکن جب مسمہ ذکر کر دیا جائے تو پھر مجبوری کی وجہ سے مسمہ آ جاتا ہے کیونکہ میاں بیوی دونوں اس پر خود راضی ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی, لیکن یہاں اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ کہ دو چار صفحات قبل ایک مسئلہ گزرا تھا, ذرا آپ نکالیں بھائی وہ جگہ کہ متن تھا دو چار صفحات قبل ولو تزوجها على هذا العبد او على هذا العبد فاذا احدهما اوكس والاخر ارفع. مل گئی بھائی عبارت؟ یہ متن ہے بھائی متن. ولو تزوجها على هذا العبد او على هذا العبد فاذا احدهما اوكس والاخر ارفع. اس متن کے اندر تفصیل بیان ہوئی تھی کہ صاحبین کے نزدیک نکاح میں مسمہ اصل ہے اور امام صاحب کے نزدیک مہر مثل جو ہے وہ اصل ہے. تو معلوم ہوا صاحبین کے نزدیک اصل کیا ہے؟ مسمہ. اور صاحبین میں امام محمد بھی آ گئے, معلوم ہوا امام محمد کے نزدیک بھی اصل کیا ہے؟ مسمہ اصل ہے, مہر مثل اصل نہیں. لیکن یہاں دلیل ذکر کر رہے ہیں, دلیل کس کی ہے؟ طرفین کی, امام صاحب کی بھی اور امام محمد رحمہ اللہ کی بھی. اور دلیل صاحب ہدایہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوجَبُ الْأَصْلِيُ فِي بَابِ النِّكَاحِ اس لیے کیونکہ مہر مثل جو ہے یہ موجب اصلی ہے باب نکاح میں. تو یہاں اشکال ہوتا ہے. پیچھے آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مسمہ اصل ہے, اور یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مہر مثل اصل ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو بعض محشی حضرات نے یہاں ذکر کیا کہ یہ صاحب ہدایہ سے یہاں سہ ہوا ہے. بھائی سہ ہوا ہے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صاحب بنایا وغیرہ جو ہیں, جو ہدایہ کی عظیم شرح ہے بنایا اور شارحین, انہوں نے اس اعتراض کو ذکر نہیں کیا. تو صاحب بنایا وغیرہ نے اس اعتراض کو اور اس اشکال کو ذکر نہیں کیا. بھائی تو بہرحال یہاں ظاہری طور پر یہ اعتراض ہوتا ہے. بھائی دیکھیے بھائی کہتے ہیں لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوجَبُ الْأَصْلِيُّ فِي بَابِ النِّكَاحِ. بھائی دلیل چل رہی ہے طرفین کی, وہ فرماتے ہیں कि दावों के अंदर उस शख्स का कौल मुआतबर होता है जाहिर हाल जिसकी ताईद कर रहा हो, और यहां जाहिर हाल जो है उसकी ताईद करेगा जिसकी महरे मिसल ताईद करेगा। लिअन्नहु हुवल मुजबुल असली फी बाबिन निकाही, इसलिए क्योंकि महरे मिसल यही मुजब असली है निकाह में। वसारा कस्सब बागी मारब बि सौबी इजख्तलफा फी मिकदारिल अजरी, कहते हैं ये इसी तरह हो गया जैसे कि रंगरेज जो है वो कपड़े के मालिक के साथ जब दोनों का इख्तिलाफ हो जाए फी मिकदार इल अजरी, उजरत की मिकदार में। भाई एक होता है रंगसाज और एक है रंगरेज। रंगसाज वो है जो रंग बनाता है और रंगरेज वो है जो कपड़े वगैरह पर रंग चढ़ाता है, कपड़े को रंग देता है, तो उसको सबाह कहते हैं, रंगरेज कहते हैं। तो उसकी बात चल रही है। सूरत है मसला ये कि एक शख्स जो है उसका एक रंगरेज से आकद हुआ कि एक कपड़े को रंग देना है, बाद में दोनों का इख्तिलाफ हो गया, वो कपड़े का मालिक कहता है कि उजरत 2 दिरहम तय हुई थी और रंगरेज कहता है नहीं उजरत 4 दिरहम तय हुई थी। तो तरफेन फरमाते हैं देखो जब कपड़े के मालिक का इख्तिलाफ आ जाए रंगरेज के साथ तो इस सूरत में जो रंग की कीमत होती है उसके जरिए फैसला किया जाता है, उसको फैसल बनाया जाता है। रंग की कीमत कैसे निकालेंगे, कहते हैं इस कपड़े की कीमत पहले बगैर रंग के लगाई जाएगी और फिर रंग के साथ इसकी कीमत लगाई जाएगी। मसलन बगैर रंग के इस कपड़े की कीमत 10 दिरहम थी और रंग के साथ इस कपड़े की कीमत 15 दिरहम हो गई है। तो अब मालूम हुआ 10 दिरहम तो कपड़े की कीमत थी, मालूम हुआ ये जो 5 दिरहम जायद इस कीमत बढ़ गई ये रंग की कीमत है। तो इसके जरिए फैसला करेंगे और ये रंग की जो कीमत है ये तो रंगरेज की ताईद कर रही है। रंगरेज 4 दिरहम का मुतालबा कर रहा है और रंग की कीमत भी कितनी है, 4 से भी ज्यादा है भाई। तो लिहाजा इस सूरत में देखो उस रंग की कीमत के जरिए फैसला किया जाता है। और अगर यह रंग की कीमत कम हुई यानी कपड़े का मालिक जो 2 दिरहम उजरत बयान कर रहा है तो इस रंग की कीमत भी 2 दिरहम या उससे कम बनती है। मसलन वैसे कपड़ा 10 दिरहम का है लेकिन रंग के साथ उसकी कीमत 11 या 12 दिरहम बन रही है, तो इस सूरत में ये रंग की कीमत किसकी ताईद कर रही है, कपड़े के मालिक की, लिहाजा उसका कौल मोतबर होगा। तो देखा यहां रंग की जो कीमत है उसके जरिए फैसला किया गया। तो यहां पर भी खावंद और बीवी के दरमियान महर की मिकदार में इख्तिलाफ आया है तो महरे मिसल के जरिए फैसला किया जाएगा। तो कहते हैं वसारा का सब बागी, देखिए फिर तर्जमा जरा दोबारा सारा देख लें। व लहुमा तरफैन की दलील यह है अन्नल कौल फी दावी कौल मैया शदुलहु जाहिरु, के दावों के अंदर वो कौल जो मोतबर होता है वो उस शख्स का कौल होता है जिसके लिए जाहिर गवाही दे रहा हो। वह जाहिर शाहिदुल लिमैया शदुलहु महरुल मिसली, और जाहिर तो उसी के लिए गवाही दे रहा है जिसके लिए महरे मिसल गवाही दे रहा है। लिअन्नहु हुवल मुजबुल असली फी बाबिन निकाही, इसलिए क्योंकि महरे मिसल यही मुजब असली है निकाह के बाब में। वसारा का सब्बागी मारब बिसौबी, और ये इसी तरह हो गया जैसे कि रंगरेज हो कपड़े के मालिक के साथ। इज़ख्तलफा फी मिकदार इल अजरी, जब इन दोनों का इख्तिलाफ आ जाए उजरत की मिकदार में। युहक्कमु फीही कीमतु सिबगी, तो फैसल बनाया जाएगा इसके अंदर रंग की कीमत को। इसके अंदर हकम और सालिस किसको बनाया जाएगा, फैसला करने वाला किसको बनाया जाएगा, रंग की कीमत को फैसल बनाया जाएगा भाई। तो वो रंग की कीमत जिसकी ताईद कर रही हो उसके कौल का एतबार किया जाएगा कसम के साथ भाई। सुम मजा कर रहा हो ना, देखिए भाई ऊपर जरा मतन में आइए। व इन तल्लकहा कब्ल दुखूली बिहा, और अगर खामन ने इस औरत को सोहबत करने से पहले तलाक दे दी, फल कौल कौलहू फी निसफिल महरी, तो फिर खावंद का कौल मोतबर है निसफे महर में। तो साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि ये जो ऊपर मतन में आया कि अगर सोहबत से पहले तलाक दी तो खावंद का कौल मोतबर है, ये मसला जिक्र है जामे सगीर में और असल यानी मबसूत में। ये दोनों इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताबें हैं, जामे सगीर और असल में ये मसला इसी तरह जिक्र है कि अगर सोहबत से पहले तलाक दी तो खावंद का कौल मोतबर है। جبکہ جامع کبیر کے اندر امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ متعہ کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا. بھئی آپ نے پڑھا تھا اگر ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر مقرر کرتا ہے باقاعدہ, تو اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو نصف مہر دینا پڑے گا, اور اگر صحبت کے بعد طلاق دی تو پورا مہر دینا پڑے گا. اور اگر ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر مقرر ہی نہیں کیا تو وہاں مہر مثل آ جاتا ہے, لیکن یہ مہر مثل صحبت سے پکا ہوگا. اگر صحبت سے پہلے خاوند نے طلاق دی تو پھر وہاں متعہ دینا پڑے گا, یعنی تین کپڑے دینے پڑیں گے. توجہ ہے؟ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جامع صغیر اور مبسوط کے اندر تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر صحبت سے پہلے خاوند نے طلاق دے دی تو خاوند کا قول معتبر ہے, اور جبکہ جامع کبیر کے اندر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متعہ کو فیصل بنایا جائے گا, اس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا. تو دونوں قولوں میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے. جامع صغیر اور مبسوط سے پتا چلا خاوند کا قول معتبر ہے, اور جامع کبیر سے کیا پتا چلا کہ متعہ کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا. تو دونوں قولوں میں کیا آیا؟ تعارض آیا. متعہ کے ذریعے فیصلہ کریں گے, معلومہ متعہ جس کی تائید کر رہا ہے اس کا قول معتبر ہوگا. تو دونوں قولوں میں بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے. تو صاحب ہدایہ اس تعارض کو بھی ذکر کریں گے اور پھر آگے اس کا جواب بھی دیں گے. بھائی کہتے ہیں ثم ذکرہا ہونا, پھر امام محمد رحم اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ان بعد الطلاق قبل الدخول, کہ صحبت سے پہلے طلاق کے بعد القول قوله فی نصف المہر, وہ قول جو معتبر ہے وہ اس خاوند کا قول ہے نصف مہر میں. خاوند نے صحبت سے پہلے طلاق دی ہے تو نصف مہر دینا پڑے گا نا, تو خاوند کا قول معتبر ہے کہ خاوند کا قول معتبر ہے نصف مہر میں. وہذا روایت الجامع الصغیر والاصلی, اور یہ روایت ہے جامع صغیر کی اور اصل یعنی مبسوط کی. وذکر فی الجامع الکبیر, اور امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں ذکر فرمایا ہے کہ انہ یحکم متعۃ مثلہا, کہ اس جیسی عورت کا جو متعہ ہوتا ہے اس کو فیصل بنایا جائے گا, اس کو حکم بنایا جائے گا. اس جیسی عورتوں کو جو متعہ دیا جاتا ہے اس کے ذریعے فیصلہ کریں گے. وہ ہوا قیاس قولہما, اور یہی قیاس ہے طرفین کے قول کا بھی. بھائی ادھر دیکھیے, طرفین نے کیا فرمایا تھا, اوپر مسئلہ کیا بتلایا, طرفین کے نزدیک مہر مثل کے ذریعے فیصلہ کریں گے, مہر مثل جس کی تائید کر رہا ہوگا اس کا قول معتبر ہوگا. طرفین کا قول یہی تقاضا کرتا ہے کہ طلاق سے پہلے مہر مثل کو آپ نے فیصل بنایا ہے تو طلاق کے بعد متعہ کو فیصل بنانا چاہیے. توجہ ہے؟ طلاق سے پہلے مہر مثل کو آپ نے فیصل بنایا. بھائی دیکھیے ایک شخص اور ایک عورت نے نکاح کیا اور مہر کو ذکر نہیں کیا تو وہاں کیا آ جائے گا؟ مہر مثل آ جائے گا. مہر مثل, تو دیکھو ابھی صرف نکاح ہوا ہے لیکن مہر مثل آ گیا. ہاں البتہ ابھی مہر مثل پکا نہیں ہوا, خاوند صحبت کر لے گا تو مہر مثل پکا ہو جائے گا, اور اگر خاوند نے صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر متعہ دینا پڑے گا. توجہ ہے؟ توجہ سے سمجھ لو, ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور دونوں نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا, مہر کو ذکر ہی نہیں کیا, تو وہاں کیا آ جائے گا؟ مہر مثل. لیکن یہ مہر مثل ابھی پکا نہیں, خاوند نے اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر متعہ دینا پڑے گا. تو معلوم ہوا نکاح کے بعد مہر مثل آ چکا ہے لیکن ابھی وہ پکا نہیں, صحبت خاوند کر لے گا تو یہ مہر مثل پکا ہو جائے گا, اور اگر صحبت سے پہلے خاوند نے طلاق دے دی تو متعہ دینا پڑے گا, یعنی وہ تین کپڑے دینے پڑیں گے. آپ پڑھ چکے ہیں بھائی, تو وہ متعۃ الطلاق وہ جو تین کپڑے تھے کہ ایک بڑی چادر ہو اور ایک قمیص ہو اور دوپٹہ ہو, جیسے عربوں کا لباس ہوتا تھا وہ دینا پڑے گا, اور ہمارے ہاں جو ہیں ایک پورا سوٹ دینا پڑے گا اور ایک بڑی چادر, یعنی چار کپڑے, شلوار قمیص دوپٹہ اور ایک بڑی چادر دینی پڑے گی. یہ متعہ بھائی. توجہ ہے؟ تو کیا صورت ہوئی, निकाह किया है, महर मुकरर नहीं किया, तो निकाह के बाद क्या आ गया? महरे मिसल। अगरचे पक्का नहीं लेकिन महरे मिसल आ तो चुका है, तो देखो निकाह हो चुका है और महरे मिसल आ गया। अभी सोहबत नहीं की, सोहबत से पहले ही महरे मिसल आ चुका है लेकिन अभी पक्का नहीं है। सोहबत कर लेगा तो यह महरे मिसल पक्का हो जाएगा। मालूम हुआ सोहबत ना भी की हो फिर भी महरे मिसल आ चुका है, अलबत्ता अभी पक्का नहीं है। और इसी औरत को अगर यह सोहबत से पहले फिर तलाक दे देता है तो देखो अब तलाक के बाद मुता देना पड़ेगा इस औरत को। महरे मिसल की तंसीफ नहीं होती, उसको आधा नहीं किया जाता। बात समझ में आ गई। मालूम हुआ तलाक से पहले महरे मिसल है तो तलाक के बाद क्या है? मुता है भाई। यही औरत जिसे अभी सोहबत नहीं की, तलाक से पहले क्या सोहबत बेशक नहीं की लेकिन महरे मिसल तो आ चुका है, बेशक अभी पक्का नहीं है लेकिन है तो महरे मिसल, तो तलाक से पहले महरे मिसल है और तलाक के बाद मुता है। तो तरफैन के कौल का तकाजा यह है कि तलाक से पहले अगर आपने महरे मिसल को हकम बनाया था तो तलाक के बाद अब मुता को हकम बनाना चाहिए। बात समझ में आ गई। ये माना है वदा करा फिल जामिअल कबीरी, और जामे कबीर के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया है अन्नहु युहकम मुतातु मिसलिहा, कि इस जैसी औरत का मुता जो है वो उसके जरिए फैसला किया जाएगा, उसको हकम बनाया जाएगा। वह हुआ कियासु कौलिहिमा, और यही तरफैन के कौल का कियास भी है। लिअन्नल मुताता मूजबतुन बादत तलाकी, इसलिए क्योंकि मुता जो है वो निकाह का मुक्तजा होता है बाद तलाकी, किसके बाद? तलाक के बाद, यानी सोहबत से पहले। तलाक के बाद मुता निकाह का मुक्तजा होता है का महरिल मिसल कबलहू, जैसे कि महरे मिसल तलाक से पहले। भाई देखो खामन ने निकाह कर लिया, महर जिक्र नहीं किया तो क्या आएगा? महरे मिसल। तवज्जो है, लेकिन यह महरे मिसल अभी पक्का नहीं है। खावन सोहबत करेगा तो पक्का हो जाएगा, लेकिन बहरहाल चाहे पक्का है या पक्का नहीं, सिर्फ अभी निकाह हुआ है तलाक नहीं हुई, तो इस निकाह का मुक्तजा क्या है? क्या आएगा? महरे मिसल आएगा, अभी तलाक नहीं हुई। तवज्जो है, फिर सुनो। एक शख्स एक औरत में निकाह हो गया, महर इन्होंने आपस में जिक्र नहीं किया, जब जिक्र नहीं किया तो क्या आएगा? महरे मिसल। तो देखो सोहबत से पहले ही महरे मिसल आ चुका है जी। लेकिन अभी पक्का नहीं हुआ, सोहबत कर लेगा तो महरे मिसल पक्का हो जाएगा, और सोहबत से पहले तलाक दे देगा तो मुता देना पड़ेगा। तो यही बयान कर रहे हैं। तो आपने तलाक से पहले जब महरे मिसल को फैसल बनाया है तो तलाक के बाद अब आपको मुता को फैसल बनाना चाहिए, यही तरफैन का कौल तकाजा करता है। बात समझ में आ गई। ये माना है, कहते हैं लिअन्नल मुताता मूजबतुन बादत तलाकी, इसलिए क्योंकि मुता जो है वो निकाह का मुक्तजा है बादत तलाकी, तलाक के बाद, जब सोहबत से पहले तलाक दे दी। का महरिल मिसल कबलहू, जैसे कि इस निकाह का मुक्तजा महरे मिसल है कबलहू, तलाक से पहले, यानी चाहे सोहबत ना भी की हो तलाक से पहले फिर भी क्या रहा है? महरे मिसल। मुता तो तलाक के बाद आएगा, तलाक से पहले तो महरे मिसल ही है। बात समझ में आ रही है। तो कहते हैं फतु हकम, तो लिहाजा इस मुता ही को हकम बनाया जाएगा। का हुआ, जैसे कि महरे मिसल जो था उसको हकम बनाया गया था। बात समझ में आ गई। फिर सुन लो, फिर सुन लो। साहिबे हिदाया ने बतलाया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दो इबारतों में तआरुज आ रहा है। एक इबारत उन्होंने जामे सगीर और मबसूत में जिक्र की, उससे पता चला कि सोहबत से पहले अगर खावंद तलाक दे दे तो फिर खावंद का कौल मोतबर है, और जामे कबीर के अंदर वो फरमाते हैं कि अगर सोहबत से पहले खावंद तलाक दे दे तो मुता को हकम बनाया जाएगा, मुता के जरिए फैसला किया जाएगा। तो एक जगह वो कह रहे हैं खावंद का कौल मोतबर है, दूसरी जगह कह रहे हैं मुता को फैसल बनाया जाएगा। तो दोनों कौलों में क्या रहा है? तआरुज भाई। उसका आप जवाब दे रहे हैं वजहु तौफीक भाई। तौफीक भाई, वफ़क युवफ़िकु, तौफीक का माना है एक कौल को दूसरे कौल के मुआफिक बनाना। बाज़ औकात उलमा के अकवाल में, उलमा के अकवाल में बज़ाहिर तआरुज और टकराव मालूम होता है, तो फिर उलमा ऐसी सूरत जिक्र करते हैं कि जिससे वो तआरुज खत्म हो जाए, इसको कहते हैं तौफीक भाई। तौफीक भाई यानी दोनों कौलों को एक दूसरे के मुआफिक बना देना, ऐसी तकरीर करना कि दोनों कौल एक दूसरे के मुआफिक हो जाएं, इसी को ततबीक भी कहते हैं। तबका त्वा है, बा है और काफ दो नुकतों वाला। तबका युतबिकु तदबीकन या वफ़का युवफिकु तौफीकन, दोनों का एक ही माना है, एक कौल को दूसरे के मुताबिक बनाना या एक कौल को दूसरे के मुआफिक बनाना। अब साहिबे हिदाया ऐसी तकरीर करेंगे कि दोनों कौल एक दूसरे के मुआफिक हो जाएंगे। इधर देखिए भाई, पहले ही इसको समझ लीजिए भाई। देखो साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि असल यानी जो मबसूत है वहां पर यह जो मसला जिक्र किया है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने, वहां हजार और दो हजार का जिक्र किया है। हजार और 2000 यानी खावंद और बीवी का इख्तिलाफ हुआ, खावंद कह रहा है महर 1000 दिरहम था और बीवी कह रही है 2000 दिरहम था, जबकि जामे कबीर के अंदर जो उन्होंने मसला जिक्र किया है वो 100 और 10 के साथ जिक्र किया है कि मसलन खावंद कह रहा है महर 10 दिरहम था और बीवी कह रही है महर 100 दिरहम था। तो इस वजह से चूंकि वहां मिकदार अलग अलग जिक्र की गई है, इस वजह से बजाहिर कौलों में तआरुज मालूम होता है। किस तरह कहते हैं, देखो मबसूत के अंदर इख्तिलाफ हजार और 2000 में जिक्र किया, तो खावंद का कौल 1000 वाला है, तो सोहबत से पहले तलाक देगा तो कितना आएगा, 500 निस्वे महर यानी 500 देना पड़ेगा। और मुता तो 500 दिरहम का अमूमन नहीं होता भाई, मुता तो सस्ता सा होगा, 15-20 दिरहम का होगा ज्यादा से ज्यादा। तो जब खावंद खुद हजार का इकरार कर रहा है, मालूम हुआ सोहबत से पहले कितना देना पड़ेगा, 500, ये तो खुद खावंद इकरार कर रहा है, तो इसलिए वहां पर मुता को फैसल और हकम और सालिस बनाने का कोई फायदा नहीं, वहां बस खावन के कौल ही पर 500 दे दो, क्योंकि मुताबेशक 20 दिरहम बन रहा है लेकिन खुद खावन 500 देने पर राजी है या नहीं, एतराफ कर चुका है या नहीं, तो इसलिए वहां कहा खावन का कौल मोतबर है, मुता को हकम बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर भी उस सूरत में वही 500 ही देने पड़ेंगे। और जबकि जामे कबीर के अंदर 100 और 10 में मसला जिक्र किया और खावन का कौल लिया जाए तो फिर 5 दिरहम देने पड़ेंगे, हालांकि इस जैसी औरत का मुता 20 दिरहम का होता है, उसको जो 3 कपड़े देने हैं वो कितने के बनते हैं, 20 दिरहम के, तो खावंद 10 दिरहम महर जिक्र कर रहा है और सोहबत से कबल निस्फ महर आता है तो गोया 5 दिरहम वो देना चाहता है, और औरत ने 100 का दावा किया है और 100 का निसफ 50 है तो गोया औरत 50 का दावा कर रही है। तो लिहाजा यहां पर तो मुता को हकम बनाने का फायदा है कि अब औरत को 20 ही दिरहम दिए जाएंगे, 5 दिरहम नहीं दिए जाएंगे, बात समझ में आ गई। तो यहां पर तो इख्तिलाफ 100 और 10 में है, यहां तो मुता को हकम बनाने का फायदा है, लेकिन मबसूत के अंदर तो इख्तिलाफ 1000 और 2000 का है, वहां तो मुता को हकम बनाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वहां पर खावंद ही के कौल का एतबार किया और यहां पर मुता को हकम बनाने का कहा। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ दोनों कौलों में तआरुज नहीं है। तो कहते हैं वजह तौफीकी, और दोनों अकवाल में तौफीक और ततबीक की सूरत यह है कि अन्नहु वज़अ अल मसअलत फिल असली फिल अल्फ वल अल्फैनी, कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मसले को वजा फरमाया यानी मसले की सूरत बनाई फिल असली यानी मबसूत के अंदर, फिल अल्फी वल अल्फैनी 1000 और 2000 में, वल मुतातु ला तबलुगु हादल मबलग फिल आदती, और मुता जो है वो इस मिकदार को नहीं पहुंचता आदतन भाई, फला युफीदु तहकीमुहा, लिहाजा मुता को हकम बनाने का कोई फायदा नहीं है। वज़अहा फिल जामिउल कबीर फिल मिअति वल अशरति, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मसला बनाया जामे कबीर के अंदर 100 और 10 में। वह मुता तो मिस लिहा इशुरूना, और इस जैसी औरत का मुता जो है वो 20 दिरहम होता है। फयुफीदु तहकीमुहा, तो यहां पर मुता को हकम बनाना फायदा देगा, इसलिए यहां पर मुता को हकम बनाया।
वल मजकूर फिल जामिअ सगीर साकितुन अन जिक्र अल मिकदारी, और वो जो जिक्र किया गया है जामे सगीर में साकितुन अन जिक्र अल मिकदारी, वो खामोश है मिकदार के जिक्र से। यानी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मबसूत में तो 1000 और 2000 मिकदार जिक्र की, जामे कबीर के अंदर जो है 100 और 10 मिकदार जिक्र की, लेकिन जामे सगीर उसमें कोई मिकदार जिक्र नहीं की। मसला तो जिक्र किया लेकिन मिकदार जिक्र नहीं की। लिहाजा जामे सगीर को वो जो मबसूत के अंदर जिक्र है उसी पर महमूल किया जाएगा, क्योंकि मबसूत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताबों में असल है भाई। तो चूंकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह मबसूत के अंदर एक मसला जिक्र फरमा चुके थे, वो मसला जिक्र हो गया, मुतायन हो गया, तो दोबारा जब मसला जिक्र किया जामे सगीर के अंदर तो अब वो सारी तफसील बयान करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, उन्होंने उसको बयान नहीं किया, मिकदार को जिक्र ही नहीं किया। तो लिहाजा ये जो जामे सगीर के अंदर इबारत है इसको मबसूत पर ही महमूल करेंगे, और मबसूत के अंदर तो 1000 और 2000 का इख्तिलाफ था और उसके अंदर तो खावन का कौल मोतबर था, इसलिए यहां पर भी जिक्र फरमा दिया कि खावन का कौल मोतबर है सोहबत से पहले तलाक देने की सूरत में। तो कहते हैं वल मजकूर फिल जामिअ सगीर, और वो जो जिक्र किया गया है जामे सगीर के अंदर साकितुन अन जिक्र अल मिकदारी, वो खामोश है मिकदार जिक्र करने से। फयुहमलु, तो लिहाजा इस जामे सगीर में जो जिक्र है इसको महमूल किया जाएगा अला मा हुवल मजकूर फिल असली, वो जो असल यानी मबसूत में जिक्र किया गया है उसी पर इसको महमूल करेंगे भाई। व शरह कौलिहिमा, और तरफैन के कौल की शरह यह है भाई। मैंने आपको बतलाया था जब मसला हमने शुरू किया था, मैंने कहा था यह बड़ा मुश्किल मसला है, अइमा ने यह मसला जिक्र फरमाया है लेकिन इसकी पूरी तशरीह नहीं की, तो असहाब तखरीज ने इसकी तशरीह की। फिर मैंने तफसील बयान की थी कि महरे मिसल को फैसल बनाएंगे, अगर उसने औरत की ताइद की तो औरत का कौल मोतबर, और अगर महरे मिसल ने खावंद की ताइद की तो खावंद का कौल मोतबर, और दोनों में से हर एक मुद्दाई भी है और हर एक मुनकिर भी है, लिहाजा अगर दोनों में से जो भी बयना ले आएगा तो उसका बयना कबूल किया जाएगा, और अगर दोनों बयना ले आए तो फिर उसका बयना कबूल किया जाएगा जो जाहिर हाल के खिलाफ होगा। मैंने सारी तफसील बयान की थी, वही तफसील अब ये साहिब हिदाया बयान फरमा रहे हैं। ये असहाबे तखरीज इस मसले की तखरीज कर रहे हैं, कहते हैं व शरह कौलिहिमा, और तरफैन के कौल की शरह यह है फीमा इदख्तलफा फी हाल कियाम निकाही, उस सूरत में जब मियां बीवी ने इख्तिलाफ किया है निकाह मौजूद होने की हालत में। निकाह मौजूद हो, वही जब मसला शुरू हुआ था मैंने बताया था ये निकाह की मौजूदगी में इख्तिलाफ कर रहे हैं, लेकिन सोहबत के बाद अगर तलाक देगा तब भी यही हुक्म है। दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाए और उसके वारिस आकर इख्तिलाफ करें तब भी मसला इसी तरह है, तो इसीलिए वो एक सूरत जिक्र कर रहे हैं, बाकी तीन का भी वही हुक्म है मैंने बतला दिया भाई। तो कहते हैं व शरह कौलिही माफीमा इदख्तलफा फी हाल कियाम निकाही, और तरफैन के कौल की शरह उस सूरत में जब मियां बीवी आपस में इख्तिलाफ करें निकाह कायम होने की हालत में। अन नज़ौज इज़्ज़त दाल अल्फा, के जब खावंद 1000 का दावा करे वल मर अतल अल्फैनी, और औरत 2000 का दावा करे। फइन काना महरुम मिसलिहा अल्फन औ अकल्ला, अगर इस औरत का महरे मिसल 1000 या 1000 से कम है, देखो महरे मिसल को फैसल बना रहे हैं उसके जरिए फैसला कर रहे हैं, तो कहते हैं फइन काना महरुम मिसलिहा अल्फन औ अकल्ला, अगर इस औरत का महरे मिसल 1000 या 1000 से कम है फल कौलु कौलुहू, तो इस सूरत में वो कौल जो मोतबर है वो खावंद का कौल है। वह इन काना अल्फैनी औ अक्सरा, और अगर औरत का महरे मिसल 2000 या ज्यादा है फल कौलु कौलुहा, तो औरत का कौल मोतबर है। वह अय्युहुमा अकाम अल्बय्यिनता फिल वजहैनी तुकबलू, और इन दोनों में से जिसने भी बय्यिना कायम कर दी फिल वजहैनी दोनों सूरतों में, यानी चाहे महरे मिसल मर्द की ताइद कर रहा हो चाहे महरे मिसल औरत की ताइद कर रहा हो,
दोनों सूरतों में जो भी बयना पेश कर दे उसका बयना कबूल कर लिया जाएगा। तो कहते हैं वह अयुहुमा अकाम अल बयना तफिल वजहैन तुकबलू, और इन दोनों में से जिसने भी बयना कायम कर दिया दोनों सूरतों में, चाहे महरे मिसल खावंद की तायद कर रहा हो या बीवी की, तुकबलू, जो भी बयना पेश करता है वह बयना कबूल कर लिया जाएगा। वह इन अकामा, और अगर दोनों ने कायम कर दिया अल बयना ता बयना को, वह इन अकाम अल बयना था, और अगर दोनों ने बयना कायम कर दिया फिल वजहिल अव्वली, पहली सूरत में। पहली सूरत कौन सी? जब महरे मिसल खावंद की ताइद कर रहा है। भाई देखिए ना, ये पिछली सतर में ही जिक्र हुआ है। फइन काना महरु मिसलिहा अल्फन औ अकल्ल फल कौलु कौलुहु, ये पहली सूरत है। महरे मिसल किसकी ताइद कर रहा है? खावंद के कौल की। खावंद ने भी हजार कहा है और महरे मिसल भी कितना है? हजार या हजार से कम है, तो महरे मिसल खावंद की ताइद कर रहा है। और अगर वह इन कान अल्फैनी औ अक्सरा, और अगर महरे मिसल दो हजार या ज्यादा है, फल कौलु कौलुहा, तो औरत का कौल मोतबर है। दूसरी सूरत आ गई। तो वजह अव्वल से पहली सूरत मुराद है जब महरे मिसल खावंद के कौल की ताइद कर रहा हो। और आगे वजह सानी जिक्र करेंगे। वजह सानी से क्या मुराद है? जब महरे मिसल औरत के कौल की ताइद कर रहा हो। बात समझ में आ गई? तो ये जो दोनों वजहें हैं ये पिछली सतर में ही जिक्र हैं। भाई दो सूरतें हैं ना, पहली सूरत ये है कि महरे मिसल खावंद की ताइद कर रहा है, और दूसरी सूरत क्या है? महरे मिसल बीवी की ताइद कर रहा है। तवज्जो है? और जिसकी ताइद महरे मिसल कर रहा हो उसका कौल मोतबर है, क्योंकि जाहिर हाल उसकी ताइद कर रहा है। तवज्जो है? और बयना किसका कबूल किया जाता है? जिसका कौल खिलाफ जाहिर हो। तो पहली सूरत में, पहली सूरत भाई, खावंद एक हजार का मुद्दाई है और औरत का महरे मिसल भी एक हजार या एक हजार से कम है, तो जाहिर हाल किसकी ताइद कर रहा है? खावंद की, खावंद की। लिहाजा इस सूरत में औरत के बयना कबूल करेंगे। गवाह दोनों ले आए, औरत भी गवाह ले आई, मर्द भी गवाह ले आया, अब किसके गवाह कबूल करें? तो आपको बतला रहे हैं, जिसके गवाह जाहिर हाल के खिलाफ होंगे उसके गवाहों को कबूल करेंगे। या यूं कहें, यूं कहें, जिसके गवाह इस बात कर रहे होंगे उसके गवाह कबूल किए जाएंगे, क्योंकि एक है इस बात और एक है नफी। इस बात के लिए गवाह चाहिए और नफी के लिए कसम चाहिए। तो जिसके गवाह से इस बात हो रहा हो उसके गवाह कबूल किए जाएंगे। लिहाजा, लिहाजा अब खावंद ने कितने का दावा किया है? एक हजार। और महरे मिसल भी खावंद की ताइद कर रहा है और औरत तो दो हजार का दावा कर रही है, तो औरत का कौल खिलाफ जाहिर है, यानी औरत का कौल ज्यादती को साबित कर रहा है। तो लिहाजा औरत की बयना को कबूल किया जाएगा। औरत मुस्बित ज्यादत है और खावंद मुनकिर ज्यादत है भाई। तो कहते हैं वह इन अकाम अल बयना था, और अगर दोनों ने बयना कायम कर दी फिल वजहिल अव्वली, पहली सूरत में जब जाहिर हाल खावंद की ताइद कर रहा है, तो तुकबलु बयना तुहा, तो औरत की बयना कबूल की जाएगी, क्योंकि वो खिलाफ जाहिर है। लिअन नहा तुस भी तुस ज्यादा था, इसलिए क्योंकि औरत की बयना ज्यादती को साबित कर रही है, और इस बात के लिए भी क्या चाहिए? बयना चाहिए होती है। वफिल वजह सानी, और दूसरी सूरत के अंदर जब जब महरे मिसल औरत की ताइद कर रहा है, तो कहते हैं वफिल वजह सानी, दूसरी सूरत में बयना तो हो, खावन की बयना कबूल की जाएगी। लिअन नहा तुस भी तुल हत्ता, हत का माना है कमी, हत उनका क्या माना है? कमी। लिअन नहा तुस भी तुल हत्ता, इसलिए क्योंकि खावन की जो बयना है वो कमी को साबित कर रही है। भाई महरे मिसल तो औरत की ताइद कर रहा है, औरत ने 2000 का दावा किया है और महरे मिसल भी 2000 या 2000 से ज्यादा है, तो जाहिर हाल औरत की ताइद कर रहा है, और खावन क्या कहते हैं? नहीं, हजार है, तो खावन का दावा खिलाफ जाहिर हुआ, और जब ये खिलाफ जाहिर है तो खावन का बयना कबूल किया जाएगा। और नीस खावन का बयना इस बात कर रहा है कि औरत ने मेरे लिए महर में कमी कर दी है, और औरत उसका इनकार कर रही है। तवज्जो है?
तो यह माना है। तो कहते हैं वफिल वजह सानी बय्यिनतुहु, और दूसरी सूरत के अंदर यानी जब महरे मिसल औरत की ताइद कर रहा है तो बय्यिनतुहु खावंद की बय्यिना कबूल की जाएगी, लिअन्नहा तुस्बितुल हत्ता, इसलिए क्योंकि खावंद की जो बय्यिना है वो कमी को साबित कर रही है। व इन काना महरुम मिसलिहा अल्फं व खमसमिअतिन, अच्छा भाई अगर महरे मिसल दोनों के दरमियान हुआ, न महरे मिसल हजार है न 2000 बल्कि 1500 है, दोनों के दरमियान है, दोनों के बीच में है, फिर क्या करे, 1500 से 1500 ही नहीं मुराद, बस दोनों के बीच में है, बात समझ में आ गई। तो महरे मिसल दोनों के बीच में है फिर क्या करेंगे, तो फिर याद रखो हमारे अस्हाबे तखरीज आपस में इख्तिलाफ करते हैं, बाकी सूरत में तो इत्तेफाक लेकिन यहां आकर इख्तिलाफ करते हैं। अबू बकर जस्सास राजी जो हैं बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं भाई, इनकी पैदाइश हुई है 305 हिजरी में और वफात हुई है 370 हिजरी में। पैदाइश कब? 305 हिजरी में और वफात हुई है 370 हिजरी में। ये बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं अहनाफ के, ये फरमाते हैं कि इस सूरत में दोनों को कसम दी जाएगी, खावंद को भी और बीवी को भी जी। दोनों कसम उठाएंगे ताकि हो सकता है दोनों में से कोई एक कसम से इनकार कर दे तो वहीं पर मुसम्मा का पता चल जाएगा जी। खावंद इनकार करेगा मालूम हुआ बीवी ने जो जिक्र किया है वो साबित हो गया, या बीवी इनकार करेगी तो जो खावंद ने जिक्र किया मालूम हुआ वो साबित हो गया, तो दोनों को कसम खिलाई जाएगी। और फिर अगर दोनों ने कसम खा ली तो फिर इस सूरत के अंदर वो 1500 ही वाजिब कर दिए जाएंगे जी। उसी पर फैसला कर दिया जाएगा, वो जो महरे मिसल है वो जो दोनों के बीच में है उसी पर क्या कर देंगे फैसला। ये कौन फरमाते हैं? अबू बकर जस्सास राजी रहमहुल्ला, जबकि अबू बकर जस्सास राजी रहमहुल्ला के उस्ताद हैं इमाम करखी भाई, इमाम अबुल हसन करखी रहमहुल्ला, ये भी बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं। इनकी पैदाइश हुई है 260 हिजरी में और वफात हुई है 340 हिजरी में। 340 अबू बकर जस्सास राजी की वफात हुई है 370 में और इनकी वफात हुई है 340 में भाई, 260 हिजरी इनकी पैदाइश है। तो इमाम करखी रहमतुल्लाह जो उस्ताद हैं अबू बकर जस्सास राजी के, वो फरमाते हैं तीनों सूरतों में दोनों को कसम देंगे। अबू बकर जस्सास राजी तो फरमाते हैं सिर्फ एक सूरत में दोनों को कसम देंगे, बतलाया था कि अगर महरे मिसल खावंद की ताइद कर रहा है तो खावंद का कौल मोतबर है, उसको कसम दे देंगे। अगर महरे मिसल औरत की ताइद कर रहा है तो औरत को कसम दे देंगे बस, और अगर दोनों के बीच में है तो फिर दोनों को कसम दे देंगे। तो इस सूरत में अबू बकर जस्सास राजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं दोनों को कसम देंगे जब महरे मिसल दोनों मकदारों के बीच में हो। जबकि उनके उस्ताद अबुल हसन करखी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तीनों सूरतों में दोनों को कसम देंगे, यानी चाहे महरे मिसल खावंद की ताइद करे, चाहे महरे मिसल औरत की ताइद करे, चाहे महरे मिसल दोनों के बीच में हो, हर सूरत में दोनों कसमें खाएंगे। वो फरमाते हैं ताकि जो भी सूरत हो जब दोनों को कसम दी जाएगी तो हो सकता है दोनों में से कोई एक इनकार कर दे, जब इनकार कर देगा तो मुसम्मा का पता चल जाएगा, और जब मुसम्मा का पता चल जाएगा तो उसी पर फैसला हो जाएगा। तो वो तीनों सूरतों में तहालुफ की बात करते हैं कि दोनों को कसम दी जाएगी, और फिर अगर ये दोनों फिर कसम खा लेते हैं फिर महरे मिसल के जरिए फैसला कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मालूम हुआ अस्हाबे तखरीज में यहां इख्तिलाफ है। अबू बकर जस्सास राजी के मुताबिक तहालुफ सिर्फ एक सूरत में है जब महरे मिसल दोनों मकदारों के दरमियान हो, और इमाम करखी के नजदीक तीनों सूरतों में तहालुफ होगा, चाहे महरे मिसल औरत की ताइद करे, चाहे मर्द की ताइद करे, या दोनों की मकदारों के दरमियान हो भाई। तो कहते हैं वह इन का न महरू मिसलिहा अल्फों व खमसमी अतीन, और अगर इस औरत का महरे मिसल जो है 1500 है तहालफा, तो फिर दोनों कसम खाएंगे। वह ईदा हलफा, और जब ये दोनों कसम उठा लेंगे ये जिबू अल्फों व खमसमी अतीन, तो 1500 जो है दिरहम वाजिब हो जाएंगे। हादा तखरीजुर राजी, ये रहमहुल्ला, ये अबू बकर राजी रहमहुल्ला की तखरीज है। वकाल अल करखी रहमहुल्ला यतहालफानि फिल फुसूलि सलासती, कि दोनों कसम उठाएंगे तीनों फसलों में, तीनों सूरतों में, यानी चाहे महरम मिसल औरत की ताइद करे, चाहे मर्द की ताइद करे, चाहे दोनों के दरमियान हो, तीनों फसलों में दोनों कसम उठाएंगे। सुम्मा युहक्कमु महरुल मिसल बादा जालिका, फिर उसके बाद महरम मिसल को हकम और फैसल बनाया जाएगा। भाई तो कहते हैं सुम्मा युहक्कमु महरुल मिसल बादा जालिका, तो फिर इस तहालुफ के बाद महरम मिसल को हकम बनाया जाएगा। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस बेहादा हुल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।